भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज भी इस कथा सत्र का पांचवा दिवस है, तो जो भी आप लोग श्रद्धालु उपस्थित हैं सभी को संस्था की तरफ से स्वागत है और सभी के लिए भगवान की चरण कमल में प्रार्थना भी है। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितंश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान बद्ध जीव के पालनार्थ अनेक अनेक लीला अवतार ग्रहण करते हैं, विशेष करके सुत गोस्वामी 22 अवतार का वर्णन करते हैं और अंत में कृष्ण को स्वयं भगवान अवतारी पुरुष रूप में सिद्ध करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि कृष्ण ही इस बद्ध जीव के कल्याण के लिए अंतर्जामी परमात्मा रूप में हमेशा उनके साथ रहते हैं हर जोनी में और कर्म फलादाता के रूप में समस्त प्रकार शरीर दे करके कर्म फल भोग कराते हैं। और ये भी कहे कि इसलिए ये जो गुणावतार के रूप में स्वयं भगवान वासुदेव रजोगुण में ब्रह्मा, तमोगुण में शिव और सतोगुण में विष्णु इस रूप में सृष्टि आदि प्राण आदि क्रिया करते हैं, इन तीनों में से जो विष्णु है वो शुद्ध सत्व में रहते हैं, वो गुणातीत है। तो इसलिए अगर किसको गुण से पारे जाना हो तो केवल विष्णु का ही भजन करना चाहिए, ये निर्णय दिए। तस्मात एकेन मनसा भगवान सप्तांगपति ध्येय पूज्यस्य नित्यदा, केवल भगवान सात्वतांगपति भगवान विष्णु का ही भजन पूजन करने से गुण से पार जा सकते हैं। ये निर्णय करके जब ये ऋषि मुनियों ने पूछे थे कि स्वधर्म वर्मणि कि भगवान जब चले गए तो धर्म किसका शरण में गया, तो इस प्रश्न को उस बोलते हुए कहे कि ये जो कथा मैंने अभी सुन करके आया परीक्षित महाराज के राजसभा से महासभा से, वहां पे सुख मुनि जो श्रीमद भागवत के आख्यान कहे, ये श्रीमद भागवत जो व्यास रचित है, जब भगवान कृष्ण चले गए अपन स्वधाम में तो संपूर्ण जीव जगत के कल्याण के लिए धर्म की रक्षा के लिए इस घोर अंधकार जगत से एक सूर्य की भांति ये भागवत ग्रंथ उदय हुआ। ये कृष्ण के परिवर्तित स्वरूप है, कृष्ण ही इस रूप में आए भागवत ग्रंथ रूप में। तो बोलते हैं भागवत अर्क अधुना उदितः, अभी वर्तमान भागवत रूपी सूर्य प्रकाश हुआ। तो जिसी का हृदय आकाश में जो बद्ध जीव इस घन अंधकार में भ्रमित हो रहे हैं, अपने को रास्ता नहीं मिल रहा है, जैसे कोई घोर अंधकार हो तो हम कोई गली में फंस गए तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे, गंतव्य स्थल अब पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे सुबह होगा सूर्य उदय होगा तो पता चल जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब ये भटकते हुए जीव अंधकार से भटकते हुए जब भागवत रूपी सूर्य के शरण जाएंगे तो प्रकाश लेंगे, उसका सहाय लेंगे तो अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच सकते हैं। तो भागवत भी उनको अपने गंतव्य स्थल में पहुंचाने के लिए सहायता करेगा, और वही भागवत रूपी सूर्य सूर्य में ही धर्म अपने शरण ग्रहण किया। तो इस बात को सुन करके सोनकादि ऋषि फिर पूछने लगे कि ये जो महाग्रंथ कलिमल नाशिनी ये भागवत कौन प्रणन किया, कब किया और क्यों किया। तो इसी प्रश्न को उत्तर देते हुए सुत गोस्वामी कहते हैं भागवत के इतिहास, ये चतुर्थ अध्याय में कहते हैं कि द्वापरे युग पर्यायम, कि जो पिछले द्वापर युग था उसका तृतीय पर्याय में तीसरे पहर में युग संध्या के समय में वासव्या कलौ हरे वेद व्यास ने प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए, उनको वासव्या कहा जाता है, क्योंकि हरि स्वयं हरि ज्ञान अवतार लिए पराशर मुनि के औरस उनसे अपरिचर वसु के कन्या सत्यवती से ये सत्यवती सुतक के रूप में व्यासदेव प्रकट हुए। जब प्रकट हुए इससे बड़ी लंबी कथा है, वो अपरिचर वसु के कन्या, वसु देवताओं से बड़े श्रेष्ठ होते हैं, इसी वसु कन्या को किसी कारण से साप मिला था, उन्होंने मत्स्यगंधा होकर के दासराज के पुत्री के रूप में जन्म लिया, केवट की पुत्री नाव चलाने वाली। तो पराशर मुनि देखे तो उनको एक साप मिला था, उनके शरीर से मछली की गंध आ रहा था, तो जो भी हो पराशर उनसे पुत्र उत्पन्न किए तो उनके कृपा से उनके शरीर से दुर्गंध चला गया था। वही सत्यवती अपने कुमारित्व रहा पराशर की कृपा से, वही बाद में भीष्म की प्रतिज्ञा के कारण वही उन्होंने उनके पिता जो उनका नाम क्या था महाभारत के जो भीष्म जी के पिताजी शांतनु महाराज, शांतनु महाराज को विवाह किए। वही तो व्यासदेव ने प्रकट हुए उसमें भगवत अंश था, संग भगवान इस कलिजुग के लोग को उद्धार करने के लिए वाङ्मय मूर्ति ज्ञान अवतार के रूप में प्रकट हुए। प्रकट होकर के स्वयं जितने शास्त्र है सब खुद पढ़े, सिर्फ भगवान स्वयं है उनको तो कोई पढ़ने का कोई दिक्कत था नहीं, सब पढ़ करके और सोचने लगे कि अभी कलिजुग आगत प्राय है। इस कलिजुग में अब पहले बताया जा चुका है कि लक्षण कैसा है, कोई परमार्थ के लिए किसी का इच्छा ही नहीं, आलसी है। बाकी काम के लिए उत्साह दिखाएंगे, परमार्थ काम के लिए सब आलस्य करेंगे। किसी का पास ना समय है, ना धैर्य है, ना बुद्धि है, ये सब प्रकार से हीन होंगे। शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, अगर पढ़ने चाहेंगे समझ में नहीं, समझने नहीं आएगा, अगर थोड़ा बहुत कोई समझा भी दिया तो करेंगे भी नहीं। इस स्थिति में तो क्या क्या जाए, और ये जो वैदिक ज्ञान था श्रुति के रूप में, पहले एक वेद के रूप था, यजुर्वेद के रूप में, उसको लोग कैसे सोचेंगे, कैसे समझेंगे कलिकाल में जी इतने कम समय में। तो उन्होंने इस बारे में सोच विचार करके वेद को विभाजन किया चार भाग में। केवल इतना नहीं, उसके बाद वेदांत सूत्र की रचना किए, 18 पुराण अपने अपने लोगों का अधिकार के हिसाब से 18 पुराण की रचना किए। अंत में ये सोचे कि ये जो वेदांत आदि पुराण आदि में कलिजुग में जो मुख्य तौर पर जो लोग होंगे उनको भागवत में कहा गया स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम, उनका इस वेदांत पाठ में तो अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उन्होंने मना के, नहीं, अपना अपना, जैसे कोई व्यक्ति का चार हाथ हो उनके हिसाब से कोई कुर्ता बनाए, हम बोले हमें भी कुर्ता पहनेंगे, तेरा दो हाथ है तू कैसे उसको पहनेगा, कि जो दो हाथ के हिसाब से बना हो चार हाथ वाला उसको कैसे पहनेगा, नहीं। तो इसलिए नहीं मानेंगे कि नहीं हमको रोक दिए उनको दिए हम, नहीं ऐसा नहीं, हमारा अधिकार उसके लिए नहीं है, हमारा क्षमता नहीं। तो इसलिए कलिजुग में जितने लोग सप्तपाय शूद्र प्राय ही है कलो शूद्र संभवा, तो उन लोग का ये जो पुराणादि वैदिक वाङ्मय में पढ़ करके समझने का अधिकार नहीं, इस बात को सोच करके बोले उनके लिए क्या दुख है। तो उन्होंने महान इतिहास महाभारत, जिसको पंचम वेद कहते हैं, वेद का पांचवा रूप के रूप में महाभारत रचना किए, विशाल ग्रंथ लख्य श्लोक दे करके। इस महाभारत में सभी का अधिकार है, स्त्री सुंदर द्विजाति किसी को, और इसी में महाभारत को रचना करके उसमें सारे वेद वेदांत सूत्र पुराण का जो मुख्य मुख्य शिक्षा है उसी को बड़े सरल ढंग से कहानी के तौर से उन्होंने दे दिए। कोई भी अनपढ़ मूर्ख नीच जाति के लोग भी उसको पढ़ करके अपना अपना कर्म का निर्धारण कर सकता है, धर्म का निर्धारण कर सकता है। इसलिए महाभारत दिए। तो सब करने के बाद महाभारत आदि करके अपने चतुराश्रम पूरा की, ब्रह्मचर्य गार्हस्थ वानप्रस्थ, अंत में त्यागी संन्यास्तर में जाकर के भी पूरे जीव जगत के लिए इतनी सारी रचना करने के भी अपने सम्यप्रास आश्रम जो बद्रिकाश्रम है सरस्वती नदी के किनारे बद्रिका आश्रम में अपने आश्रम में बैठ करके बड़े दुखी बैठे थे। अशांत चित्त थे, उनको लगता था कुछ खोया मैंने, मेरे चित्त बहुत कुछ खाली खाली लगता है, मैं ये सब क्या क्या कमी रह गया, स्वयं विचार करते थे बैठ करके, और उनको समझ भी नहीं आ रहा था क्या कमी है मेरे में, मैं क्यों शांति प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, बड़े अशांत चित्त है, क्या गड़बड़ किया मैंने, बैठ करके दुखी होकर के सब प्राप्त किए हैं, महाजोगी महाज्ञानी महाकारुणिक सब कुछ व्रत निष्ठा ध्यान धर्म सब करने के बाद भी शांति नहीं प्राप्त करते, ज्ञान के ध्यान के योग के चरम सीमा तक पहुंच गए थे उन्होंने, लेकिन फिर भी और ऐसे जगह पर हिमालय की चोटी में सरस्वती नदी के किनारे में जो क्षेत्र ही परम पवित्र धाम था, नारायण ऋषि के पवित्र धाम था, वहां बैठकर भी इतने सुंदर वातावरण बैठकर भी उनको शांति नहीं मिल रहा था, हम लोग के नजबगढ़ में गजबगढ़ में कैसे शांति मिलेगा, उनको नहीं मिल रहा था तभी जमाने में, सब कुछ करने के बाद में एकांत में बैठ करके सोच रहे थे क्या हो रहा है, क्या कमी है मेरे में, ऐसे सोच रहे थे, कोई निर्णय नहीं मिल पा रहा था, सोच रहे थे क्या मुझे कोई कमी किया क्या, जो मैंने लोक कल्याण के लिए लोक हित के लिए इतने सारे किया उसमें कुछ कमी छोड़ गया क्या, क्या कमी रहा, नीज किया वो किया, बाकी लोग ने ये कर नहीं पाएंगे करके महाभारत भी लिख कर दिया वो समझ कर, फिर क्या हो गया, फिर मुझे शांति क्यों नहीं प्राप्त होता, ऐसे जब दुखित चित्त में चिंतित थे इसी समय में नारद जी का प्राकट्य होता है, ब्रह्मपुत्र नारद भगवान की मन की अवतार है, उन्होंने नारायण नारायण हमेशा भगवत नाम लिया करते हैं, देवदत्त इमं वीणा, अपने वीणा के झंकार से भगवत नाम कीर्तन करते हुए वही समय प्रास आश्रम में पहुंचे, इस रास्ते नारद जी को देख करके व्यासदेव बड़े खुश हो गए, क्यों दोनों महापुरुषों का मिलन, एक तो ब्रह्मर्षि महाब्रह्मज्ञानी ज्ञान के प्रकांड विद्वान है और व्यासदेव स्वयं, और दूसरी तरफ से जो भक्ति और भक्ति के प्रचार करने में सर्वश्रेष्ठ अधिकारी भगवत भक्त चुड़ामणि नारद जी, वो देवर्षि है ये ब्रह्मर्षि है, ये दोनों का मिलन हो रहा है, मतलब भक्ति और ज्ञान का मिलन हो रहा है, ये ज्ञान के तरफ से महाज्ञानी व्यासदेव है और भक्ति सबसे बड़े भक्त नारद जी, दोनों का भेंट हो रहा है, तो व्यासदेव जो अशांत चित्त थे उठ करके जब नारद जी को दर्शन किए तो तुरंत खुश होकर के उनको आगवानी कर रहे हैं, कभी कभी अगर दो बहुत पहुंचे हुए भक्तों का भेंट होता है तो उनका मिलन भी बड़े सुंदर होता है, भक्तों के भक्तों का मिलन बहुत सुख कर है, भक्तों से बिरह दुख कर होता है, उसको एक कहावत में कहते हैं, एक हरि भक्त से अगर दूसरे भक्त मिलते हैं क्या प्रक्रिया होता है, ये कहते हैं कि चार मिले 64 खिले 20 रहे करजोड़, हरि भक्तों से हरि भक्त मिले बिहन से 7 करोड़, आप लोग शायद जानते होंगे उसको, चार मिले मतलब जब एक भक्त बैठा है बहुत दिन के बाद उनके बहुत उच्च कोटि भक्त आ रहा है, अब देखते हैं उसको बोला अच्छा वही है क्या, लगता तो वही है, मतलब उनका दृष्टि और उनके दृष्टि दोनों को देखते हैं, वही है क्या, वही प्रभु जी तो नहीं है, लगता तो वही प्रभु जी है, दोनों ध्यान से दोनों उनका दो चक्षु उनके दो चक्षु का मिलन होता है, चार मिलते हैं, चार मिलन होता है चक्षु के चक्षु, दृष्टि की दृष्टि मिलन होता है, चार मिले जब पास में आके देख ली अरे आप ही हैं, पहचान ली अरे आप ही हैं ना, तब उनके 32 दांत फूल खुल जाएगा, उनके फूल खुल जाएगा, 64 खिल उठेगा, फुल मून की तरह हंसेंगे पूरे दांत निकाल करके, तो इसे बोलते 64 खिले उनके पूरे 32 दांत, उनके 32 दांत पूरा दिखाई पड़ेगा, चार मिले 64 खिले, इतने में नहीं रहेंगे, अब जब पास में आ गए तो हाथ जोड़ेंगे, प्रभु जी प्रणाम प्रणाम, उनके दस अंगुली, उनके दस अंगुली पूरा 20 रहे करजोड़। तो इतने में नहीं होगा, जब नजदीक आ जाएंगे खाली हाथ जोड़ के थोड़ी रहेंगे, गले मिलेंगे, वो तो इतना दिन से मिले, तो हाथ जोड़ छोड़ करके जब आपने अपने गले में मिल जाएंगे, आलिंगन मुद्रा में आएंगे, तो कहा गया है कि एक मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ लोम होता है, रोम होता है, तो सारे रोम रोमांचित हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो उनके 3.5 उनके 3.5 दोनों का संपूर्ण शरीर रोमांचित हो जाता है, विहन से 7 करोड़। इस प्रकार की प्रक्रिया होता है, जो इस प्रकार भक्तों के मिलन होता है। तो उनको मिले तो ये ज्ञान और भक्ति की दोनों को मिलन, दोनों ये ब्रह्मर्षि और देवर्षि मिल करके उनको आसन दिए बैठने के लिए, देवर्षि अपने आसन में बैठे। व्यास जी कुछ पूछे नहीं अब तक, पहले उन्होंने पूछना शुरू किए, नारद जी ने पूछे, बोले वेद व्यास जी आप मुंह क्यों सूखा हुआ है आपका, क्या कमी है आपका, आप भगवदंश है, क्या क्या नहीं किया आपने, सारे आश्रम पूरा किया, इतने बड़ी ज्ञान ध्यान योग सब कुछ पूरा किया आपने, इतने बड़ी बड़ी भारी रचना किया, ये सब करने के बाद मुंह सुखा लटका कर बैठे, क्या बात है। तो उनके मन की बात को जो साधुजन होते हैं वो चित्त दर्शन करते हैं, वो केवल शरीर को नहीं देखते हैं, और सीधा उनका दृष्टि अंदर जाता है, अंदर से देख लेते हैं वो क्या सोचता है। तो पूछ लिए, तो व्यासदेव जी बोले मेरा मन की बात आप कहे, मेरा मन में अशांति है, सब कुछ कर लिया, ध्यान गान जो सकड़ों वर्ष पर्यंत, तभी जमाने में तो हजारों साल का आयु हुआ करता था, हजारों साल कई सकड़ों वर्ष पर्यंत ध्यान साधना योग साधना ज्ञान साधना समाधि पर्यंत गया मैंने, समाधि स्तर तक जाकर के इतने सारे रचना इतने सारे संकलन सब किया, लेकिन ये सब करने के बाद में सहस्र युग पर्यंत साधना करने के बाद भी शांति नहीं मिला, शांत हूं। और आप तो हसखुश बिल्कुल मस्ती में है, तो आप ही महाभक्त है, आपके पास तो अज्ञान भटक ही नहीं सकता, तो कृपा करके आप मुझे निदान बताइए क्यों मैं इसे अशांत हूं। देखिए ज्ञान और भक्ति की तुलना क्या आ जाता है यहां, ज्ञान मार्ग में वेद व्यास से मुकाबले कोई नहीं हो सकता, क्योंकि साक्षात ज्ञानमूर्ति हैं भगवान, जब वाङ्मय अवतार लेते हैं ज्ञान मुद्रा में आते हैं तो वेद व्यास होते हैं, उनके समान ज्ञानी ध्यानी ज्ञानी योगी को हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो इतने ज्ञान इतने साधन योग समाधि पर्यंत जाकर भी इसी प्रकार स्थान में नारायण आश्रम में रहकर भी इतने सारे उपासना करने पर भी कमी था किसका, भक्ति का। भक्ति के बिन में कोई साधन योग ध्यान कर्म कोई आत्मतृप्ति नहीं कर सकता, आसान इतने समय बिता कर भी शांति कामी होकर वो मन में शांति नहीं है, बैठे थे मुंह लटका करके। और नारद जी बोले और केवल ये भी नहीं, शांति के अशांति के कारण भी ढूंढकर नहीं मिल रहा था, किस लिए ये भी नहीं निर्णय कर पा रहे थे, किस लिए दुखी हूं ये भी नहीं पता था, क्यों दुखी हूं वो भी पता नहीं था। तो नारद जी ने उनको बताया कि आपने लोक हित के लिए जो सब किया है, अपने लोक कल्याण के लिए ना ये सब किया, सारे किया ना, सभी तो किया, लेकिन जो सारे शांति का सर्व शांति का आश्रय है उनका बारे में तो कुछ प्रकाश नहीं किया। बोले भगवान की चरित से हरि चरित ही सकल प्रकार की शांति का उत्स है, उनके बारे में क्या किया न, मैंने धर्म अर्थ काम मुख्य उसके बारे में यही सब रचना किया, ऐसे किया ना, वो तो सब बहुत कुछ किया, लेकिन लोगों को जो चाहिए था वो ना दे करके, जो उनको रुचि, जैसे कोई रोगी है, किसी को बीमार है, बीमारी के समय में डॉक्टर आपको बताएगा ये नहीं खाना, ये परहेज करेगा ना, जैसे किसी को शुगर की बीमारी है, डॉक्टर बोलेगा तुमको मीठा नहीं खाना। आप लोग कई होंगे पेशेंट इसके, तो सच बताओ आपको मीठा खाने में ज्यादा रुचि होता ना जी, जो चीज को परहेज किया जाए उसी चीज खाने में बहुत पसंद होगा, केवल सुजोग ढूंढते होंगे कब चांस मिले और उसको खा ले, जिसको मना किया गया है ना, जो हमारे लिए कुपथ्य है, इस कुपथ्य को सेवन करने के लिए हमेशा हम आदर करेंगे और ढूंढते रहेंगे सुजोग, और जो औषधि है थोड़ा पीना पड़ेगा, फिर भी पीना पड़ेगा, बड़े उनके लिए अरुचि दिखाएंगे। बोले जिस इस संसारी जीव ने अनादि काल से इस कर्म बंधन से फंस करके और माया के लात खाते हुए इतने बंधन में आ चुका है कि कभी सुख भोग से विरक्त हो ही नहीं, होना नहीं चाहता है, आसक्त और विरक्त, विरक्त का नाम निशान नहीं लेता, इतने फंसा हुआ, और आप उनको फंसाने का और अच्छा तरीका दिखा दिया, जो चाहते थे उनकी तो दिखाया तुमने, उन्होंने भोग सुख को कामना करते थे, सुख कामना से कितने लात खाने भी उनसे मन नहीं मुड़ता है, किसी का मन मुड़ता है, कितने दुखी होते हैं लेकिन फिर भी नहीं इस बार तो कर लूंगा, इस बार हो जाएगा। बोले आप तो उनको धर्म उनका काम आगे ईश्वर का काम, ये करने से ये मिल जाएगा, ये करने से ये भोग होगा, यही रास्ता दिखा उनको और फंसा दिया उनको ज्यादा। यद्यपि आप बोलते हैं कि महाभारत और विष्णु पुराण स्कंद पुराण आदि में ब्रह्मवर्त पुराण भगवान की चरित्र से वर्णन किया, वो लेकिन ठीक से नहीं किया, धर्म और कर्म की आड़ में इस प्रकार से किया, शुद्ध चरित्र वर्णन नहीं किया, जिस कारण से ना लोगों को शांति है ना आपको शांति है, दोनों में काम नहीं हुआ तो कैसे शांति है। बोले व्यास जी अगर इतने काव्य अलंकार व्याकरण छंद से युक्त होकर के बड़े सुंदर भाषा सुष्टम देख करके बहुत सुंदर काव्य ग्रंथ आप रचना किया, अनेक पुराण वेदांश रचना किया, लेकिन उसमें केवल हरि के लीला नहीं है, भगवत चरित नहीं है, तो वो किस प्रकार कहते कि बायस तीर्थ वत, बायस माने कौवा, कौवा का तीर्थ कौन सा होता है, कौवा कहाँ इकट्ठा होते हैं, जहां कचड़ा जुटा होता है वहीं जाते हैं कौवा, स्वच्छ पवित्र स्थान में कभी कौवा नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, तो आपने ऐसा कर दिया तो बास तीर्थ की तरह है, जो मानस सरोवर में हंस रहते हैं हंस कभी इस तीर्थ में नहीं आएंगे, कभी वो नहीं करेंगे, इस प्रकार वृत जन हंस जैसे व्यक्तियों के लिए आप क्या किया आपने। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य बास तीर्थ के नाम से जो हम डेली सुबह सुबह पढ़ते हैं ना शास्त्र, इसको तो बास तीर्थ वही है, जानते ना क्या अकबर हम न्यूज पेपर, डेली सुबह सुबह उठ करके बेड से प्रथम शुरुआत ओपनिंग वहीं से करते हैं, सारे कचड़ा भरते हैं, जितने गंदा काम सब उसमें लिखा रहता है, कोई भगवत चरित कोई अच्छा बात उसे नहीं लिखा रहता, ये बास तीर्थ है। बोलते हैं इसको कितने सजा मजा करके लिखो, है तो कौवा की कचड़ा, लेकिन बिल्कुल छंद अलंकार विहीन भाषा त्रुटि शब्द का त्रुटि हो, लेकिन अगर भगवत चरित्र टूटी फूटी में परमहंस जन उसी के पास आएंगे, उसको देखेंगे। नस्कर्म अपि नशोभते ज्ञान अलम निरंजनम, निष्काम कर्म भी भक्ति के हीन होने से उसका स्वभाव नहीं होता। तो आपने तो यही कर्म को धर्म अर्थ काम आदि को प्रोत्साहन दिया, तो इसमें क्या होगा? और इसी के कारण आप देखिए, आप स्वयं ज्ञानमूर्ति हैं, इतने लंबी समय तक आपने साधन भजन निधिध्यासन समाधि तक किए, इतने समय ज्ञान के प्रकाश किए, लेकिन फिर भी आपको शांति नहीं है। आपको मन में, मन में शांति नहीं, और क्यों शांति नहीं वो भी नहीं पता आपको। क्योंकि जो वास्तविक शांति का उच्च है वो भगवत चरित आपने उसको शुद्ध रूप से नहीं किया। तो इस प्रकार समझा करके तो उनको उपदेश दिए कि आपने समर्थ हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं, आप विशुद्ध भगवत चरित को आप रचना करो, संकलन करो। तो व्यासदेव जी माने, आप जो कह रहे हैं क्या उसका कोई प्रमाण है? आप मुझे बोल रहे हैं, इज देयर एनी एविडेंस? मैं सब कुछ किया, नहीं मिल रहा, आप आकर तुरंत बता दें कि कमी है। बोले अच्छा, कोई प्रमाण चाहते हैं ना, उदाहरण? बोले उदाहरण मैं दूसरे का दूं, मैं खुद का उदाहरण देता हूं मेरा। तो उनके अपना ही उदाहरण देना शुरू किए, अपना उदाहरण दे करके उन्होंने बताए, उन्होंने व्यासदेव पहले जन्म में, अभी मुझे नारद के रूप में देख रहे हो, मैं नारद नहीं था, मैं अपने पूर्व कल्प का एक कल्प से पहले मैंने एक दासी पुत्र था, पिताजी को मैं दिखाई नहीं, जन्म साथ से मर गए होते, माता मेरा विधवा थी, वृद्धा थी, और एक ब्राह्मण के घर में नौकरानी थी, काम करती थी, झाड़ू पोछा काम करती थी, और मैं उनका छोटा सा बेटा था, उम्र मेरा ज्यादा से ज्यादा 5 साल का था। 5 साल के उम्र के बालक तो दुग्ध पाई उससे शिशु होता ना, छोटा लड़का होता, एडमिशन स्कूल कॉलेज में नहीं करते 5 साल तक। तो ऐसे छोटा बालक था, माताजी अकेली दूसरे के घर में काम करती थी, नौकरानी थी। तो एक बार क्या हुआ, जिस गांव में हम थे और जिस ब्राह्मण के घर में मेरे माताजी काम करती थी, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में कुछ अतिथि आए, बड़े बड़े ब्राह्मण, 4 ब्राह्मण आए अतिथि बन करके, और वो आषाढ़ महीना का शुरुआत था, वो लोग बोले देखो हम लोग तो 4 महीना आके जाएंगे चतुर्मास है। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ बोले कि बोले ठीक है, 4 मास हमारा यहाँ रहिए। तो वे अतिथि महात्मा 4 महीना उस घर में रह गए जिस घर में मेरे माताजी काम करती थी। तो उस ब्राह्मण ने बोला देखो ये तो काम कर रहे, तुम बेटा इधर घूम रहे, तुम थोड़ा उनकी देखभाल करते रहो, वो भी काम करेगी, तुम भी थोड़ा लग जाओ उनके सेवा में, इतने अतिथि आ गए घर में, काम बढ़ गया, थोड़ा थोड़ी काम कर लो। जयदेव में छोटे लड़का था, लेकिन उनके उनने बोले बोले ठीक है, मेरे से जो बनेगा मैं करूँगा, छोटा बच्चा था, राजी हो गया। नारद जी कहते हैं कि मेरा ये एक स्वभाव था, बच्चा जरूर था 5 साल का, जैसे होता ना एक बालावस्था क्रीड़ा सकता, बालक पुनः सब खेलकूद में रमना चाहते हैं, है ना, नहीं ये स्वाभाविक है। बालावस्था क्रीड़ा सकता, तरुणावस्था तरुणी रखता, वृद्धावस्था चिंताग्रस्ता, है ना, नहीं तो बालक अवस्था में सब खेलकूद में रुचि लेते हैं, लेकिन मेरा कोई खेलकूद में रुचि नहीं था, मेरा कोई दोस्ती नहीं थे, मैं गरीब था, तो मेरा कोई बड़े लोग तो बड़े बालक दोस्त नहीं थे, जो भी थे मेरे कोई खेलकूद में के जाने के मन भी नहीं करता था। तो वो देख कर कि हमारे जो ब्राह्मण देवता थे जिसके घर में माता जी नौकरानी थी, वो बोले तू इधर घूमता रहते बैठ के, उन्हें थोड़ा सेवा में हाथ हेल्प करो उनको। तो उनके कहने से मैं फिर वो महात्मा लोग के गया उनकी सेवा करने के लिए। तो उन महात्माओं ने देखे, एक मेरा उम्र था छोटा बालक, दासी पुत्र थी, दासी पुत्र होने के नाते उनका वेद पाठ में अधिकार नहीं था, योग ध्यान ज्ञान को अधिकार भी नहीं था, और दूसरा 5 साल की उम्र था, समय भी नहीं था। इस उम्र में, इतने कम उम्र में, इसी प्रकार की पोजीशन में कौन सा ऐसा साधन है जो उनको उद्धार कर सकता है, इस बात को वर्णना करते हैं। बोलते हैं कि तभी मैंने गया और मुझे वो महात्माओं ने देखे, 4 ब्राह्मण महात्मा थे, उनके मन में करुणा आया, छोटा बालक देख करके मुझे, बोले बेटा इधर आओ, क्या करूँ ना, आपका क्या सेवा मुझे बताइए, पानी ला दूँ, झाड़ू लगा दूँ, आपका कपड़ा झाड़ दूँ, धो दूँ। तो महात्मा ने बोले ठीक, ये कर दो, थोड़ा उस पछा लगा दो, थोड़ा ये कमंडल उठा के यहाँ रख दो। उन लोग तो कुछ चतुर्मास के समय में जो नियम सेवा में रहते हैं साधु संत, वो तो खाते भी नहीं, बहुत कम खाते हैं, एक टाइम खाते हैं और दिन भर भजन करते हैं, दिन रात तक ज़्यादा कुछ काम होता नहीं था उनका, बैल टैल कुछ उसे खा लेते हैं, फिश तो खाते ही नहीं, तो उनका कोई ज़्यादा सेवा नहीं होता था। और करते क्या, बैठ करके भजन करते थे, कीर्तन करते थे, कथा करते थे। तो उनके साथ में हो लेता था, जब बैठ के सुनता था, समझ में, 5 साल का लड़का क्या समझेगा, आप लोग बड़े बूढ़े ही श्लोक पढ़ने से समझ में नहीं आता, तो बेचारा क्या समझेगा। लेकिन उन लोग ने जो कथा करते थे वो भी देखते थे कि बच्चा बड़ा ध्यान से बैठा है, थोड़ा इसी हिसाब से कहें कि उनको भी सुनाए पड़े। इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये जो 4 वेदांती ब्राह्मण आए थे अतिथि बनकर के चतुर्मास में, अगर वो लोग ऐसे आसन लगा करके आंख बंद करके ऐसे ध्यान करते तो उस बालक, 5 साल बालक का कुछ उपकार हो पाता, नथिंग। तो ऐसे योगी ध्यानी ज्ञानी में बेकार है, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं सजड़ पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। उन्होंने इसलिए वेदांति बिल्कुल मुंह खोल करके ताल ठोक करके कीर्तन करते थे, नाश्ते बिगाते थे, तभी तो सुना, देखा उनका बदला हृदय, उनके मुख से उच्चारित नाम, उनके मुख से उच्चारित कथा सुन करके बदला। अगर वो लोग समाधि करके चुपचाप बोलेंगे नहीं, मुख एक बार ध्यान करके बैठते हैं, 6-6 घंटा 8-8 घंटा ध्यान लगाता हूं, तो उसका कच्चू होता, कुछ नहीं होता उसका, उस बालक का क्या परिवर्तन होता, और सो जाता देखते थे, बोला हो तो आप बंद कर बैठे, मैं भी आप बंद कर बैठते हो, सो जाऊंगा, होगा क्या, कुछ भी ना होता। तो इसलिए आप कभी ये चौपड़ मन से निकाल दिए, जो वही बैठ के ऐसे करते हैं उसे कुछ नहीं होने वाला, खोलो मुंह, खोलो, नाचो गाओ, एक्टिव बनो। तो उन्होंने, उन 4 ब्राह्मणों ने जो महात्मा थे वो ऐसे नहीं थे कि आग कान बांध कर नाक बंद कर प्रणाम ध्यान कर बैठे, नहीं, उन्होंने बिल्कुल कीर्तन करते थे, ससुर कीर्तन करते थे, हरि नाम लीला कीर्तन करते थे, कथा करते थे, आरती उतारते थे, भोग लगाते, सब क्रिया करते थे, भगत थे वो। तो इसीलिए उनका सरसता लगा, जब कीर्तन करते थे वो भी जाकर नाचता था, कीर्तन करता था, आरती करते थे आरती भी देखता था, लेकर लग देता पानी, फूल देता था, छिड़कता था पानी, ये सब करता है, करते ना फूल पानी, ये सब करता था। कब बैठकर कथा करते थे, बैठकर सुनता था, वो बड़े सरल भाव से करते थे, सुनता था बैठ करके। और जो भक्तों की जो क्रिया होता है साधन का, सुबह उठेंगे मंगल आरती करेंगे, फिर उसके बाद जप करेंगे, तुलसी पूजा करेंगे, फिर भगवत क्लास होगा, फिर प्रसाद होगा, प्रसाद भी होगा, भोग लगता था, ठाकुर जी रखते थे भोग लगाते थे, भोग लगाते थे, प्रसाद जब पत्तल में खाते थे तो बैठता था वो लड़का, गरीब लड़का है तो देखते थे, छोटा बालक बैठ कर देख रहा है, बोलो बोले बेटा क्या खाएगा, आप बोलेंगे तो मैं ले लूँ थोड़ा, तो उनका वो बच्चा है छोटा, तो बोले लो खा लो, तो उनके पत्तल ला ला करके जो था चाट छोट कर खा लेता था। नारद जी कहते हैं कि जिस दिन पहली बार मैं उनको पूछा, उनका अनुमति लिया कि मैं थोड़ा ले सकता हूँ प्रसाद, तो हाँ बेटा ले लो, तो उनसे पूछ करके पहली बार उचिष्ट लेपान अनुमोदितो दुजे सकृत स्म अपातकल विष। सकृत मतलब एक बार, पहली बार मैंने उनके झूठन पतल को था नहीं, थोड़ा थोड़ा भोग लगाते हैं क्योंकि ये तो किसी का घर में अतिथि थे, अपना तो कुछ था नहीं, भिकमंगे हैं सब, कुछ ज्यादा थोड़ी होता है, थोड़ा सा कुछ लगाते हैं, रबड़ी थोड़ा 50 ग्राम की लगा दिए ठाकुर जी, उसमें थोड़ा थोड़ा लेके सब पा लिया प्रसाद, तो थोड़ा सा लगा था, बोले मैं भी लेकर थोड़ा चाट के पा लिया। जिस दिन पहले बार पाया मुझे लगा कि मेरे शरीर में कुछ बदल गया, कुछ हो गया गड़बड़ी, क्या हो गया, तो अपात के लिए विष जो विष था मेरे शरीर में से निकल गया, लगा मुझे विष निकल गया, और उसके बाद में तो मैं डेली डेली खाने लगा एवं प्रवृत्तम, तो इसी काम में प्रवृत्त हो गया, प्रतिदिन पूछा मैं ले लो, प्रतिदिन उनका झुटन पतन उठाने का काम तो महीने किया, और उठा करके पतल चाटा जो दादा था प्रसाद। तो बोलते हैं केवल उनके इसी प्रसाद की, उनके झूठा प्रसाद की खाने के कारण मेरा समस्त जो कर्म संस्कार था, अनर्थ था, सब क्लियर हो गया। और उसके साथ साथ में पूरा भजन तक करता था, सुबह उठ करके उनके साथ मंगल आरती से लेकर शाम तक हर काम में बैठता था, जब नाचते थे, गाते थे, कथा बोलते थे, आरती उतारते, सब काम भाग लेता था। तो उन्होंने भी मेरे ऊपर बड़ा दया करते थे, ज्यादा कुछ मुझे काम नहीं देते थे और मुझे पास में बैठाते थे, क्योंकि साधु बड़े उदार होते हैं, मैं सरल था और उनकी कृपा से थोड़ा बहुत मतलब था गुण, लेकिन उन लोग का कृपा पा करके मेरा अंदर सारे सद्गुण आ गया, ब्राह्मण की अनुवर्ती होकर के उनकी सेवा करना, संयम रखना, नियम वृत्ति रखना, जो जो सब कथा मानना, ओबीडियंट होना, ये जो सब सद्गुण, बच्चा था मैंने 5 साल का बालक, कोई बदमाशी नटखटपन नहीं रहा, बिल्कुल शुद्ध शांत सप्त नियमाग्रही अनुवर्ती सेवा करने के गुण आ गया। बोलते कैसे आ गया, बोलते ये कोई विचित्र नहीं है, आ जाएगा कोई भी, किसी के अंदर भी आ जा सकता है। बोलते नियम है, जस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासुते सुरा, जिनके अंदर में भगवान की भक्ति आ जाए, शुद्ध भक्ति स्थित हो जाए, तो उनके अंदर में जितने दिव्य गुण है आकर के आपके आप प्रवेश कर जाएंगे, सारे दिव्य गुण आ जाएंगे। बोले बड़ी बात है, जो भक्ति करेगा तो उसके अंदर अच्छे गुण से आ जाना चाहिए, तो मेरे अंदर आ गया उनके साथ रह करके, जैसे जैसे गुण मेरे अंदर भी वही गुण आ गए, तो इससे अनुवर्ती होकर सेवाकारी होकर उनकी सेवा करते रहा। तो 4 महीना तक उनके साथ भजन करते रहा, माता जी की फ्री हो गए, बोले वो घर काम कर रही, मैं उनके साथ रहा, मेरे को ज्यादा कुछ चिंता नहीं की, तो उनके साथ में रहा, प्रतिदिन भजन कीर्तन पूजन प्रसाद सब करता था, और दिन पर दिन मेरा भजन में रुचि बढ़ता था। देखिए ये यहाँ एक और विषय ध्यान देने की बात है, भक्ति एक ऐसे अद्भुत क्रिया है जिसका विचार करने से कुछ समझ में नहीं आता। एक तो कि जन्म जन्म का जमा हुआ पाप, इतने बड़ी पाप के भंडार केवल नाम स्मरण से सब खत्म हो जाएगा, जो कई हजारों साल तक योग ध्यान ज्ञान करने पर नहीं जाता, बस केवल थोड़ा जीवा और ओठ को हिलाओ इसमें काम बन जाए, कोई नाक कान बंद नहीं करेगा, आसन प्राणायाम सुनने के इसमें हो जाएगा, बोले कोई विश्वास नहीं करेगा, किसी बोलते ना तो फालतू से बातचीत करते रहते, इसे थोड़ी हो जाता है, तो विश्वास नहीं करते। दूसरे कोई साधन करके सिद्धि प्राप्त कर लिया, सिद्धि प्राप्त करने के बाद फिर साधन का आवश्यकता रहता है क्या? जैसे आपने यहां से द्वारका जाना है, द्वारका मंदिर, तो यहां से बस पकड़कर यहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद फिर बस पे जरूरी है, बस फिर पकड़ेंगे बैठेंगे क्या? नहीं, बस छोड़ देंगे, बोले जाओ मेरा आ गया मैं। आपको भूख लग रहा है, आप खाना खा लिया,
खाना खाने के बाद फिर खाने के लिए इच्छा रहेगा? नहीं, एक बार पूर्ति होगा फिर बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं नहीं हटाओ। साधारण तौर पर हर स्थिति में हम यही देखते हैं, नियम है, लेकिन भक्ति में ये नियम बिल्कुल विपरीत है। आप साधन करते करते जब जितने आगे बढ़ेंगे इतने साधन ज्यादा बढ़ेगा, उसे हटेगा नहीं। जैसे आप दूसरी क्रिया में खा रहे हैं, जितने ज्यादा खाएंगे इतने भूख निवृत्ति हो जाएगा, खाने के प्रति रुचि हटते जाएगा, लेकिन उसमें जितने करेंगे इतना बढ़ते जाएगा, उल्टी है। कोई भी साधन ऐसा नहीं, ज्ञान ध्यान क्रिया आदि में जब कर ले स्थिति के बाद फिर छूट जाता है साधन, फिर वहां पहुंच के फिर क्या जरूरी है। एक बार सिद्धि प्राप्त हो जाए फिर जम नियम आदि का जरूरत नहीं, एक बार समाधि में आ जाए फिर आसन ध्यान 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 का जरूरत नहीं, फिर एक बार ब्रह्मानुभूति हो जाए फिर कोई ज्ञान अनुसंधान नहीं करेंगे। लेकिन भक्ति एक अद्भुत रीति है जिसमें जितने ज्यादा भजन में बढ़ेंगे इतने ज्यादा साधन भी बढ़ेगा। पहले पहले हम श्रवण कीर्तन करते हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा डेढ़ दो घंटा बैठते हैं, बहुत सारे और काम है, ठीक है इतना बोलते इतना चलेगा, अब बंद कर दीजिए। लेकिन धीरे धीरे उसको करते रहेंगे, उसको रेगुलर करते रहेंगे, तो करने से क्या होगा, हृदय शुद्धि होगा, जो आसक्ति है दुनिया के प्रति वो दूर होगा। जैसे जैसे दूर होता जाएगा तो जो डेढ़ घंटा था ये दस घंटा तक जाएगा, जो डेढ़ घंटा सुनते थे और ज्यादा सुनेंगे अपने, क्योंकि अब दूर हो गया सब बाधा, दूर होते जाएगा, ज्यादा करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हो गया अभी बंद कर दो की जरूरत नहीं ना, अभी आप बड़े मुश्किल से आठ माला कर पाते हैं, कोई चार माला कोई सोलह माला तक कर पाते हैं, और बराबर करते रहो धीरे धीरे जब मन शुद्धि होगा, मन लगेगा, जितने बढ़ेंगे आगे चल के और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। बाकी कोई भी क्रिया में ज्यादा कर लिया धीरे धीरे कम है, मैं कर लिया इतना, लेकिन यही एक अद्भुत क्रिया है भक्ति, जो जितने करेंगे इतने बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो नारद जी कहते हैं कि मैं उनके साथ, मुझे प्रतिदिन ऐसे हुआ जैसे जैसे दिन बढ़ते गया दिन पर दिन मेरा रुचि बढ़ते गए। नारद जी ने व्यास जी को वास्तविक अपने जीवन ही बता करके भक्ति के सोपान बताते हैं, श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक जो प्रेम प्राप्ति के जो प्रणाली है वही सिखाते हैं कि कैसे मेरे से हो गया, कैसे प्रेम प्राप्ति हुआ, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो बोलते हैं कि प्रतिदिन उनके साथ भजन में रहा तो मेरा भजन में श्रवण में कीर्तन में रुचि बढ़ते रहा, और उनको देख करके मेरा ये श्रद्धा को वर्धित देख करके तो उन जो महात्माओं ने मेरे ऊपर ज्यादा कृपा किया, बोले अच्छा लड़का है ये, तो अच्छा प्रगति कर रहा है, वो ज्यादा खुश है, मुझे अपना माने, बोले ज्यादा समय नहीं किया केवल चार मास, चतुर्मास होता ना, आषाढ़ श्रावण भाद्र आश्विन, श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक, यही होता ना चार महीना। अब देखते 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 चार महीना पूर्ण तो होने लगा, तो इन महात्माओं ने देखे कि हम लोग तो चले जाएंगे, हम तो रहेंगे चार महीना, ज्यादा दिन तो रहेंगे ना, हम चले जाएंगे, लेकिन ये बच्चा क्या करेगा। तो मुझे ध्यान दे करके वो कीर्तन भजन में लगाते थे और मैं उनके साथ में रहकर करता था। देखते 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 चतुर्मास व्रत पूरा होने को आया। इसे पूरा होने को आया, मुझे भी महात्मा लोग बताए, बोले बेटा हम लोग तो परसों चले जाएंगे, ठीक है हम चले जाएंगे। तो उन बात को सुन करके मेरा हृदय फटने लगा, आप चले जाएंगे फिर मेरा क्या होगा। क्योंकि कभी कभी देखते हैं कोई कठिन लोहा है, लोहा का एक बड़ी छड़ी है, उसको आग के अंदर डालेंगे तो नरम हो जाएगा, नरम गरम हो जाता है ना, नहीं जब तक आग के साथ रहेगा तब तक नरमपन रहेगा, अब आग से अलग हो जाए तो धीरे धीरे आपने फिर कठिनता आ जाएगा। अभी ये इतने बड़े साधु संगत में है, संत संग में है, तभी उनका ये प्रभाव ये बदल इतने परिवर्तन होते रहे, अब छूट जाए तब फिर वापस बैक टू
पैवेलियन जो था वही फिर गोल करना हो जाए, स्क्वायर आ जाए, फिर चौक पर घूम कर खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मेरे मन में हुआ कि, और सबसे बड़ा दुख तो है भक्तों की विरह, आप चले जाएंगे मेरा क्या होगा, इतने सुंदर सब चल रहा था। तो उन लोगों ने कृपा की मेरे ऊपर, बोले देखे कि बेटा रो रहा है, हम लोग चले जाएंगे सुन करके। तो उन लोगों ने मेरे ऊपर अद्भुत कृपा किए, मुझे गुह्यतम ज्ञान के उपदेश किए, जो भगवान ने अपने श्रीमुख से जो गुह्यतम ज्ञान दिए थे उस गुह्यतम ज्ञान को मुझे दे दिए जाने से पहले, जिस दिन जाने का था एक दिन पहले मुझे दे दिए, जस्ट वन डे बिफोर। नारद जी कहते हैं जिस प्रकार कभी कभी आप आग के पास कुछ काम करते हैं तो आग के जो ताप है आप तो लगेगा ना, को हीट लगता है, वो गर्म लगता है, जल ना जाए, लेकिन आपको एक विशेष लेप आता है, एक कोटिंग अगर शरीर में लगा दे, आग में हाथ में डालो कुछ भी नहीं होगा, पता है ना। जैसे कभी कभी इलेक्ट्रिक करंट, कोई इलेक्ट्रिक करंट के साथ काम करता है, सब मारने का हनच का डर रहता है, लेकिन रबर का ग्लोव्स अगर पहन ले फिर डरेगा, डर नहीं। तो इसी प्रकार उन महात्माओं ने मेरा दुख देख करके कृपा करके बोले बेटा कोई बात नहीं हम चले जाएंगे, तू डर रहा है कि आपका फिर क्या होगा, कोई बात नहीं हम ऐसे एक लेप आपको चढ़ा देंगे, ऐसे एक गुह्यतम ज्ञान आपको दे देंगे, तो आप जो कर रहा है कभी नहीं भूलेगा, बढ़ते जाएगा कभी घटेगा ही नहीं, आप तो महसूस नहीं। तो ऐसा करके मुझे जाने से एक दिन पहले 33 अक्षर वाली महामंत्र दे दिए, एक मंत्र दिए भगवत नाम विशिष्ट मंत्र दिए, और बोले बेटा उसको जप करते रहना, कृपा करके मुझे दीक्षा दे दी मुझे। और उसको उन्होंने करने लगा, वो तो चले गए और उनको करने लगा, चतुर्मास पूरा हो गया चले गए। तो नारद जी बताते हैं कि वो तो चले गए और मैं उनके कृपा से ऑलरेडी मैं भक्ति से मेरा रुचि हो चुका था। जब रुचि हो जाता ना, पहले पहले हम जो नाम करते हैं रुचि लगता है कब खत्म होगा, माला पता नहीं कब खत्म होगा, लेकिन सचमुच हमारा तो रुचि आया नहीं, अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ। जब अनर्थ खाली साफ हो जाता है, रुचि आ जाता है, तो फिर टेस्ट होता है करने में, फिर छोड़ मन नहीं करता छोड़ने के लिए। तो उनका रुचि आ चुका था। अब वो जो मंत्र दिए उसको श्रद्धा से जप किया तो निष्ठा में परिणत हो गया, दृढ़ आ गया, बिल्कुल दृढ़ता से करने लगे। बोलते मेरा ये स्थिति आ गया, अब तो उस महात्मा लोग तो चले गए। तो और एक बात इधर ध्यान देने का है कि नारद जी व्यास जी को बताते हैं, देखिए आप तो बहुत कुछ साधना किया, बहुत नाक आंख कान बंद करके बड़े अंजाम नियम आसन प्राणायाम ध्यान समाधि तक बहुत किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं 5 साल का बच्चा था, शूद्राणी पुत्र था, दासी पुत्र था, कोई काम के लिए पढ़ा लिखा भी नहीं था, कुछ नहीं था। इसमें नारद जी ने प्रमाण करते हैं कि जो भक्ति है वो भक्ति महारानी विचार नहीं रखती है कि ये दासी पुत्र है, अज्ञान है, बच्चा है, अनधिकारी है, उनके पास मैं कैसे जाऊंगा, नहीं, बाकी सब देखेंगे सोचेंगे, लेकिन भक्ति का कोई विचार नहीं है। दूसरी भक्ति का लक्षण, और 3 लक्षण बताते हैं विशेष, एक थे सदातनत्वता, सर्वात्रिकता और अनन्य निरपेक्षता, ये भक्ति के 3 महालक्षण हैं। सदातनत्वता क्या है कि भक्ति ऐसा है कि किसी भी समय में सदा समय में किया जा सकता है, आपको ये जरूरी नहीं कि बूढ़ा होने से करेंगे, बचपन नहीं, बचपन में 5 साल में करके दिखाया, कई लोग 5 साल छोटे बच्चे से करके दिखाए, युवक में कर सकते हैं, बूढ़े पे कर सकते हैं, ठंडी में कर सकते हैं, गर्मी में कर सकते हैं, कली में कर सकते हैं, तृतीया में कर सकते हैं, कोई भी काल बाधित समय बाधित नहीं कर सकता, सदा संभव है। तो काल बाधित भक्ति कोई बाधा नहीं दे सकता उसको, इसे सदातनत्व, सदा भक्ति किया जा सकता, बाकी कोई मार्ग सदा नहीं कर सकते, देशे काले सुचेपी, सबके लिए हिसाब किताब करना पड़ता, भक्ति के लिए सदातनत्व किसी भी समय क्या जा सकता, सर्वात्रिकता सर्वत्र हर स्थान में क्या जा सकता, ये ऐसा नहीं कि केवल भारत में होगा, विदेश में नहीं होगा, कि यहां होगा यहां नहीं होगा, नहीं, कहीं भी, ये कोई भी स्टेट में, कोई भी गांव में, कहां भी वैकुंठ, कोई भी लोक में, कहां भी कर, सर्वत्र किया जा सकता है। लेकिन बाकी ध्यान योग में उनके लिए स्थान चुनना पड़ेगा, सर्वत्र नहीं कर सकते, ना तो सब काल में हो सकता, ना सब स्थान में हो सकता, लेकिन ये सर्व मात्रिकता। तीसरा है अनन्य निरपेक्षता, बाकी सब मार्ग जो है वो अपेक्षा रखते हैं, ये होने से होगा, ये होने से होगा, लेकिन भक्ति एक ऐसे मार्ग है जो किसी को कोई अपेक्षा नहीं रखता, कोई अपेक्षा नहीं इसके लिए, अपने आप होगा। जैसे परमार्थ के लिए साधारणतः हम देखते हैं शास्त्र में चार मार्ग बताया गया, एक कर्म, एक ज्ञान, एक योग, एक भक्ति। एक कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग या ध्यान मार्ग और भक्ति मार्ग, ये चार मार्ग से परमार्थ को लोग बढ़ते हैं। तो उनका अपना अपना सब अधिकारी है कि कौन कोई कौन मार्ग के लिए फिट कैंडिडेट है। मतलब कर्म मार्ग के अधिकारी वो हैं जिन लोगों ने मन में बहुत भोगा सकती है, स्वर्ग आदि भोग कामना मन में बहुत है, बहुत भोग इच्छा है, तो उन लोगों ने फिर वेद शास्त्र में जो बताया गया नियम के अनुसार वैदिक यज्ञ अनुष्ठान आदि क्रियाकर्म करेंगे, ऐसे यज्ञ अनुष्ठान आदि अनुष्ठान करके स्वर्ग सुख आदि सिद्धि प्राप्त करेंगे। ये कर्म अधिकारी है, जिनका मन में भोग की इच्छा है वो कर्म मार्ग में अधिकारी है, और जिनका यह लोक परलोक दोनों लोक में कोई भोग का कामना नहीं, इच्छा ही नहीं, फलकामी नहीं है, मुक्ति कामी है, छूटना चाहते हैं, कुछ पाना नहीं चाहते हैं, और उनका सद्गुण है, क्या सद्गुण, समा दमा सोच आदि सद्गुण से गुणित है, ऐसे लोग ज्ञान मार्ग के अधिकारी हैं, वो ज्ञान के लिए अधिकार है उनके पास। और जो लोग कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि कामी जो लोग हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, और उनको भी गुण बनाना क्या करना पड़ेगा ना, जाम नियम निर्ध्यासन आदि गुण, बहुत कठिन नियम को पालन करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, ऐसे लोग योग मार्ग के अधिकारी हैं। और भक्ति मार्ग के लिए कोई अधिकारी विवेचना ही नहीं किया गया, किबा विप्र किबा सूत्र किबा पुरुष नारी कृष्ण भक्ति ते अटे सब अधिकारी, कृष्ण भक्ति में सब अधिकारी है, क्योंकि बताया गया इसमें कोई नहीं बात विचार नहीं, सब अधिकार कोई कर सकते हैं, कहां भी कर सकते हैं। बोलते हैं अधिकार कुछ नहीं ना, केवल एक अधिकार है, क्या अधिकार, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना, यही क्वालिफिकेशन है कि आप भक्ति करना आपका इच्छा होना चाहिए, दैट्स इट, आपका मन में भक्ति करने का इच्छा ही होना चाहिए, बस यही अधिकार चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बोलते फिर भी तो कुछ एक अवस्था ना, फिर अवस्था पूछते तो बताते हैं कि जिनका, जैसे हम लोग हैं, हमको पता है कि हम फंसे हुए हैं संसार में, कर्म बंधन से फंसे हुए हैं, हमको पता भी चलता है, दुखी हैं, टेंशन में हैं, फंसे हैं, छूटना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पाते, छूटने का इच्छा होने पर भी किसी कारण से, अक्षमता के कारण, असमर्थता के कारण छूट नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों का भक्ति में अधिकार है। जो किसी के लायक नहीं है वो भक्ति के लायक है, वो भक्ति के लायक, भक्ति सबको लेता है। बोलते मैं हताश हूं, हताश तो मुझे चाहिए, भक्ति के लिए हताश कैंडिडेट सिलेक्टेड है, हाँ वही सिलेक्ट होते हैं, और जो बोलेंगे हम ऐसे ना, तो फिर ज्ञान में जाओ, उसमें जाओ, जो कहीं के नहीं है, गुड फॉर नथिंग ना, ओके मेरे पास आओ, तो भक्ति महारानी तब को बुलाते हैं, जो गुड फॉर नथिंग होते हैं उन्हीं को बुलाते हैं। तो नारद जी बताते हैं, देखो मैं तो बिल्कुल अनपढ़ गवार एक दासी पुत्र थी, 5 साल की उम्र तक क्या था मेरा योग्यता, कुछ भी नहीं था, लेकिन केवल भगवत सत्संग में जाकर के क्षणिक 4 महीना मास, कोई ज्यादा नहीं, केवल 4 महीना, और किया क्या, वो लोग बोलते थे मैं सुनता था, यही तो मैं कहा ना, वो कोई ध्यान धारणा नहीं करते थे, वो बोलते थे खोल करके नाचते गाते थे, बोलते थे, उनके बोली मैंने सुना, मुझे बोलना तो नहीं आता, छोटा बच्चा था, उच्चारण भी ठीक से नहीं कर पाता था, तोतली बोली बोलता था, कपड़ा भी नहीं नंगा बैठ जाता होगा, जैसे भी तोतली बोली बोल पाता था, लेकिन सुनता था। वो इतने कहानी कहते थे, अच्छा मजा लगता था, सुनता था, हंसता था बैठ करके। केवल सुन करके, केवल श्रवण आदि, केवल श्रवण करके उनके कथा को, उनके कथा मतलब वो तो भगवान की कथा कहते थे, उसको श्रवण करके एक शूद्र पुत्र, दासी पुत्र, 5 साल के गवार नालायक लड़का आज नारद बन पाया है। और आप 1000 साल जो ध्यान ज्ञान करते हुए ना शांति को मिला, ना तो उपाय कारण बता सकते, मुंह लटका कर बैठा हुआ है, देखा ये मैं हूं। और ये कहां के एक गवार दासी पुत्र 4 महीना में करके दिखाया। भगवान की कथा की सुनने का ये प्रताप है, प्रभाव है। भागवत में एक जगह में एक प्रसंग आया है, सुन करके कैसे भगवान में उनमें रम गई। भगवान की जो प्रथम पत्नी जानते कौन है, हाँ? देवी रुक्मिणी, भीष्मक नंदिनी, कुंडिनपुर के राजा भीष्मक के पुत्री थे, राजनंदिनी रुक्मिणी, एकलौती बेटी थे उनका। और उनके भाई थे रुक्मी, बहुत बड़े प्रसिद्ध वीर थे, योद्धा थे। तो रुक्मिणी देवी एक गुण थी उनके पास विशेष, क्या कि उनके जो महाराज भीष्मक थे वो डिवोटी थे। उनका लड़का बड़ा बदमाश था, हिंदू संघ में पड़ गया था, लेकिन वो डिवोटी थे। तो उन्होंने, महाराज थे उन्हें, चक्रवर्ती राजा थे, तो उन्होंने एवरी डे, उनका टेम्पल था, भागवत क्लास करते थे उनके घर में, एवरीडे क्लास हुआ करता था। तो क्लास के लिए वो इनवाइट करते थे बड़े बड़े संतों को, नारद जी आदि को बराबर बुलाते थे, हाँ, महीना महीना दिन नारद जी बोलते आप उधर क्लास देना पड़ेगा, वो देते थे क्लास। रुक्मिणी जी का एक विशेष गुण क्या थी, बहुत अटेंटिवली क्लास अटेंड करती थी, कभी नहीं मिस करती थी, नेवर, भले खाना छूट जाए, सोना छूट जाए, खेलना छूट जाए, नहाना छूट जाए, क्लास कभी नहीं मिस करती थी उन्होंने, ये विशेष गुण थी उनकी। छोटी बेटी जब थी उम्र में, एवरी डे विदाउट फेल क्लास अटेंड करती थी उन्होंने। और क्लास में जो नारद आदि संत आएंगे वो क्या बोलेंगे, जो भगवान की कथा बोलते रहेंगे वो सुनती थी। सुन सुन करके जब उनका विवाह उपयोगी वयस हो गई, किशोरी अवस्था आ गई उनका, तो उनके लिए राजनंदिनी है, उनके लिए शादी करने के लिए दुनिया से बड़े बड़े राजकुमार ललायित थे। कोई बोलता था ये करेंगे, ये करते ना राजकुमारी क्या बोलते हैं उसको, स्वयंवर, ये करेंगे वो करेंगे। उनके भाई तो डिसाइड किया, नहीं नहीं मेरे बेटी ऐसा तैसा थोड़ी, मैं सबसे बड़े बहुत पावरफुल राजा से शादी कराऊंगी, वो डिसाइड कर दिया था लगभग। लेकिन देवी रुक्मिणी ने, उनका जो विशेष गुण थी क्लास सुनना, क्लास सुनते सुनते भगवान के बारे में ऐसे श्रवण करके उनके मन में ध्यान बैठ गई थी, वो तो मन में डिसाइड कर ली कि अगर मैं शादी कभी करूं तो वही पुरुष के साथ करूंगा, करूंगी, किसके साथ, कृष्ण के साथ, अगर शादी कभी करना ही है तो कृष्ण के साथ शादी करूंगी। और भागवत कहता है, मुझे पता नहीं पहले और होगा कि क्या होगा पता नहीं, लेकिन रुक्मिणी देवी ने जब शादी के समय आया कि लव लेटर लिखी, प्रेम पत्र लिखी, चिट्ठी लिखी उन्होंने, और भागवत में चिट्ठी को कॉपी दिया गया, हाँ उसको प्रिंट आउट है उसमें। तो यद्यपि उनके भाई ने उनका सगाई कर दिया था, किसके साथ, राजा शिशुपाल का सगाई हो चुका था, रिंग सेरेमनी हो चुका था लगभग, वो बेचारा मना नहीं कर सकती ना, बड़े भाई है, पावरफुल है, उनके माँ बाप को भी वो दबा देती है, पावरफुल था, कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन मन में तो डिसाइड की थी, नजदीक आया, शादी के दिन तय हो चुका था, जिससे नजदीक आया और मन में इतने उत्कंठा आया, संभाल ले, तभी जमान मोबाइल खाने फोन करके बुला लेती, फोन फोन था नहीं, कोई कंप्यूटर लैपटॉप आदि कुछ था, इंटरनेट आदि था नहीं, तो एक ही उपाय था चिट्ठी लिखे, अभी कोई पोस्ट भी नहीं था, किसी के हाथ में भेजना पड़ेगा, थ्रू पोस्ट इमीडिएट स्पीड पोस्ट कर दे वो भी नहीं, तो उन्होंने लिखी, पेन पेपर भी नहीं था, भोजपत्र में लेखनी में लिखी। तो पहले चिट्ठी का पहले जो सेंटेंस वो लिखी थी, भगवान के पास ब्राह्मण के हाथ में चिट्ठी भेजी, ब्राह्मण ने जो पढ़े, भगवान ने पढ़े और चिट्ठी खोल कर, तो पहले लाइन लिखी थी उन्होंने, पहले लाइन ऐसा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुन्नतान्ते प्रविश्य कर्ण विवरे हरतुंग तापम रूपं दृशां दृशिमतां अखिलार्थ लाभम त्वयिच्युत विशति चित्त अपत्रपम मे। कहते हैं रुक्मिणी जी, कहती है कि हे प्रभु, हे भुवन सुंदर, आपके सुंदरता के बारे में मैं खूब सुन रखी हूं, अभी आपका फोटो फोटो भी देखी नहीं, क्योंकि तो कैमरा था नहीं तब, ना आपका फोटो देखी, ना आपका आईडी के बारे में कुछ पता है, लेकिन सुनी खूब, नारद आदि क्लास में बताए, खूब सुनी आपके बारे में, सुन सुन करके, केवल सुन करके, श्रुत्वा गुणान, आपके गुण को सुन करके, हे भुवन सुंदर, केवल जो आपको गुण को सुना तब क्या हुआ, सुनते समय में बोलते सुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुन्नतान्ते, सुनने के बाद में प्रविश्य कर्ण विवर, जब कान के अंदर उसको ढंग से सुनती हूं तो मेरा पेन किलर टैबलेट की जैसा काम करता है। हरति अंगतापम, अंगताप मतलब जो अंग मतलब शरीर, शरीर में जो दर्द आदि होता है सारे दर्द मिट जाता था। तो मतलब हम लोग जो कि पेन होता है पेन किलर खाते हैं, तो बेस्ट पेन किलर है भगवान की कथा सुनना, ये रुक्मिणी देवी कहती है। भविष्य कर्ण विवरे हरति अंगतापम, सारे शारीरिक अंग ताप यंत्रणा आपकी कथा सुनकर के मिट गई। पहले तो इफेक्ट ये हुआ मेरा, अब कथा सुनकर के मैं जो ताप यंत्रणा होता था, मेरा पेन होता था, हेडक फेडक सब, माइग्रेशन माइग्रेन सब ठीक हो गई। फिर बोलती है क्या, रूपं दृशं दिशिमतां अखिलार्थ लाभ, अब तो मैं आपको फटोफटो तो देखी नहीं, लेकिन ऐसे सुनी आपके रूप ऐसा है, तो मैंने सोचती हूं कि अगर दृश्यमताम, दृश्यमताम मतलब कोई देखने वालों, जो जो गर्व करते हैं कि मैं देख देख देखने वाला हूं, कैसे देखेगा ना, मेरा दृष्टि शक्ति है, आंखों है, जो आंखों वाले हैं, देखने वाले हैं, इन सभी के लिए रुक्मिणी कहती है कि जितने देखने वाले आंखों वाले, मैं सबके लिए खोल कर कहती हूं, आप अगर ऐसे रूप कभी देख लेंगे तो आपके देखने के लिए जो आंख मिला वो सफल उसी दिन ही हो जाएगा, नहीं तो बेकार आंख है। अखिल अर्थ लाभ रूपं दृशां दृशिमतां, जो रूप के लिए देखने के लिए गर्भ हम देख सकते हैं, आई कैन सी, बोले तो लेम्बू कच्चू देखेगा, देखो तो उनके रूप देखो, एक बार जो रूप देखने से पूरा जीवन भर चक्षु जिसके लिए देखने के मिला, सारे देखने का सांध मिट जाए, आशा मिट जाए, अखिल अर्थ लाभ हो जाएगा, कोई और बाकी नहीं रहेगा एक बार इस झांकी देख लेने से। तो आप बताइए, तो ऐसे रूप के बारे में जो देखा, तो इस रूप के बारे में कौन सा ऐसे युवती है जो अपने चित्त धारण करके रहेगा, तो एक्सक्यूज मेरा कोई दोष नहीं इसमें, ये तो कोई भी होगा। तो इसीलिए मैं त्वयि अच्युत विशति चित्तम, हे अच्युत, आप में मेरा चित्त विशति प्रवेश कर गए, कैसा अपत्र मतलब निर्लज्ज हो करके, शर्म छूट गई मेरे से, मैं अविवाहित राजकन्या हूं, कुंवारी अवस्था में हूं, लेकिन एक्सक्यूज मी बेशर्म हो गई, क्यों आपके गुण ही ऐसा, आपके रूप के वर्णन ही ऐसा है कि मुझे निर्लज्ज करके मेरा मन मेरा हृदय जबरदस्ती आपके आत्म अंदर प्रवेश कर गया, अब मैं किसी का नहीं रहा, तो माफ करे मुझे, तो आप मुझे ग्रहण कीजिए, नहीं तो मैं गई। दूसरी लाइन में लिखती है कि आप सोचेंगे कि आप राजकन्या है, बहुत कुलशील है, कुलानी ऐसे के, बोले कौन ऐसा, मैं गारंटी देकर कहता हूं, आप कैसे वर्णन सुन करके, कौन ऐसा कुल ललना रमणी है जो अपने आप को संयम करके रख दे, आप बोलिए, तो कृष्ण बोलते ना कोई तो नहीं रख पाएगा, ना तो फिर मेरा क्यों दोस्त नहीं, कोई संसार में कोई है आपके गुण को सुन करके जानकर कोई अपने आप को संयम करके रख दे, नहीं हो सकता। तो इसलिए आप माफ करके आप कुछ कीजिए, अब मैं तो आपको वरण कर चुकी हूं, कर चुकी हूं चिट्ठी लेख करके, अब घड़ी की बार बार देखती है टाइम हो गया, कल है शादी पता नहीं, ब्राह्मण भी नहीं आया अभी, क्या हुआ पता नहीं, उनको चिट्ठी मिला कि नहीं, क्या हुआ क्या करूं, मैं तो मर जाऊंगी, दूसरे से शादी नहीं कर पाऊंगी, मैं तो डिसाइड कर चुकी हूं। अब मुंह बिल्कुल विषण न बदना, उनके माताजी हिरण्यनर्मा पत्नी उनने देखते हैं कि बेटी उनका मुंह सूख रही है, क्या बात है, कल उनका शादी है, इतनी बड़ी कारोबार, और जो बर वाले हैं ना बारात वो भी एडवांस आ गए एक दिन पहले, अब बड़ी भारी बारात आया था, बारात क्या तो सैनिक थे, हाँ वो बिल्कुल वस्त्र शस्त्र सज्ज कर आए थे, ढांक ढोंक करके ऊपर से केवल बारात जैसे अंदर में बिल्कुल सन्ने शक्ति था, उनको डर था कुछ गड़बड़ ना हो जाए क्योंकि वो क्लास सुनती है ना बराबर, तो इसलिए कुछ गड़बड़ हो सकता है अगर सिनेमा वगैरह जाती तब तो कोई बात नहीं थी, वो क्लास सुनती थी भागवत क्लास, इसलिए डर था उनका, तो इसलिए सब सजाग होकर आए थे। तो बारात आके पहुंच चुका था, भारी आयोजन किया था, एक कॉलोनी बुक किया गया था उनके लिए रहने के लिए, थर्ड वार्ड खान पान की व्यवस्था। अब शाम होने लगा, रुक्मिणी बिल्कुल व्यग्रचित्त कि क्या हुआ, मेरे लेटर का जवाब कुछ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बहुत व्यग्रचित्त, रात को नींद भी नहीं आ रहा है, रात को दूध पीकर सोना था वो भी नहीं पिया, मना कर दिया। उनके सहेली सखी और रानी उस सोच रहे क्या हो रही है बेटी का, ये बात किसको बताएगी कैसे, तो वो तो गुप्त पत्र भेजी थी। तो रात में वो ब्राह्मण आया, और प्राइवेट ब्राह्मण था, उनके घर में अलाव था, वो बोला था उनके गेट के पर बोला उनको छोड़ देना उनको जब आएंगे, तो आया उनको बताया, तो उनको पूछा, देख करके बड़े खुश हो गए, पूछा उनको बोला क्या ना, पत्र दे दिया मैंने, और दे दिया नहीं वो आए हैं, वो ब्राह्मण को लोड करके साथ में भगवान आए, जब भगवान पत्र पढ़े बोले ये द्वारका में थे, एक दिन वो महाराष्ट्र में, बोले बाप रे बाप इतने दूर कैसे जाएगा, वो रिजर्वेशन ही नहीं मिलेगा अभी तो, अब कैसे जाए अब शादी का होना कल है, अब आज चिट्ठी मिल रहा है मुझे, अब क्या बुकिंग कैसे जाऊं, तो अब किसको बोलूं कैसे जाऊं क्या, तो बोले कोई बात नहीं, कपड़ा वपड़ा कोई ब्रीफकेस रेडी भी करना नहीं, बोले तुरंत, बोले दारू को कार रेडी करो, बोले आप भी साथ बैठो, आप बताना रास्ता में चलेंगे, वहीं रात रात चल दिए, लेट नाइट में आके पहुंचे, कल सुबह शादी है, लेट नाइट में भगवान आकर दूर में बैठ गए, कहीं रुक गए, उनको भेजे बोले जाकर बता दो मैं आ चुका हूं, उनको तो रात नहीं सोई थी उन्होंने, अर्ध रात्रि में आकर लेट नाइट में ब्राह्मण आकर बताए, ओ थोड़ा शांति हुई कि आ चुके ना आ चुके, चिंता मत करो बिल्कुल ना, कैसे पढ़े चिट्ठी सब ब्राह्मण ने बताया, मैं जैसे पहुंचा आपके नाम बोली ना मुझे पहचानते हैं, नरे आपके नाम सुन करके बिल्कुल सलक कर बैठ गए, और मैंने जैसे चिट्ठी पढ़ती थी पढ़ता था जैसे एक एक लाइन, तो बहुत प्रबल उत्साहित होते थे उन्होंने, जैसे मैंने लेटर पढ़ना पूरा किया तो तुरंत ही बोले और कोई व्यवस्था नहीं करना, इमीडिएट गाड़ी के बुलाए, बोले चलो ओवरनाइट आ गए, सीधा फ्लाइट बुकिंग किया, चार्टर्ड आई सीधे लैंडिंग के यहाँ कर चुके आकर के, और डर चिंता मत करो। तो उन्होंने तुरंत ब्राह्मण को विशेष भेंट दक्षिणा जो उनको दे करके उनको शांत किया, तब शांत हुई, बोला कोई बात नहीं फिर देखा जाएगा। दूसरे दिन सुबह सुबह विवाह के पहले के होता ना देवी पूजा, क्या बोलते हैं उसको, मंगल कृत्य, तो देवी पूजा करने के लिए कई सारे सखियों के बीच में वो सब सामग्री लेकर के कुलदेवी पूजन, तो कुलदेवी पूजन के लिए उनको लेकर गई, तो रुक्मिणी देवी तब सोच रही आ तो गए लेकिन मैं तो देखा नहीं, देखने में कैसा है, सुना था ऐसे ऐसे देखने के लिए लेकिन कहाँ है एड्रेस भी पता नहीं, ब्राह्मण तो बता के बोला आ चुके हैं, कितने दूर में है, अब आएंगे कि कब आएंगे, अब तो बिल्कुल बाजा बजने शुरू हो गया, वेदी में ब्राह्मण बैठ करके बैठा है, यहाँ से गए तुरंत वेदी में क्या बोलते हैं उसको फेरी पड़ना जो भी जो काम शुरू हो जाएगा, तो अभी तक दिखाई नहीं, वो कहाँ है कहाँ है, खान पान की एक नहीं, रात को सोए नहीं, कैसे कहाँ है, कब आएंगे पता नहीं, आकर भी कैसे होगा, काम। तो सुबह उठकर जब कुलदेव पूजन में जा रही थी, बाकी सब तो ब्राह्मण देवता सब मंत्र संत्र पढ़ते हैं देवी को प्रसन्न करने के लिए, उनके शादी ठीक ठाक हो जाए, लेकिन बेचारी जो करती रुक्मिणी है उनके मन में तो एक धुन, ओ मेरे प्रभु कब आकर पहुंच जाए, कितने लेट हो रहा है, कब आएंगे, अभी पूजन करके जाते जाते नहीं आएंगे तब तो फिर गया बिगड़ जाएगा, फिर मैं दूसरा कोई मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा, मैं क्या करूं, ये चिंता में थी। इसी चिंता में जाकर कुल देवी को प्रणाम करके उनके आरती उतारी पूजा की। जब भगवान के मन में चिंता रख करके देवी पूजन की, देवी के मन में केवल जैसे गोपियों ने पूजा किए थे कात्यायनी व्रत, व्रत करके देवी माता को यही प्रार्थना करती थी, कात्यायनी महामाई नंद सूत पति कृते मम, नंद लड़का नंद की बेटा को हमारे पति बना दो, यही हमारा एक ही मांग है और कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक वही कृष्ण के लिए देवी के लिए वही प्रार्थना की जा करके। जब प्रार्थना की पूजा की तो देवी के गला से माला उतरी, माला उतरी तो पुजारी खुश हो गया, बोला देवी रुक्मिणी आपके मनस्कामना पूर्ण हो गया, जरूर आपका मंगल विवाह पूर्ण होगा, कोई चिंता की बात नहीं। बाकी जो साथी सहेली थे वो बहुत खुश हो गए, बोले होता अब क्या उनको बोलते हैं जो दुल्हा दुल्हे राजा तो आ चुके हैं बैठे हैं लेके रेडी है, अब शादी बढ़िया होगा। और उसमें क्या मतलब एक बांधते हैं ना सर में क्या एक थर्माकोल का एक बांधते मुकुट वगैरह, तो बांध बूंद करके बैठी थी करके बैठा था वो, तो बोले अभी जाना है पूजा, सीधा बैठा नहीं वेदी में बैठ के शादी हो। तो रुक्मिणी के मन की बात कौन जाने, वो किसके लिए देवी प्रसन्न होकर के माला खसा उनके मालमा दी माला दी, तो खुश हो गए कि शायद मैं जिसके लिए प्रार्थना करती हूँ शायद वो आ चुके हैं, आ चुके हैं। तो मन बहुत चंचल है व्यग्र है कि सही में आ चुके हैं, मैं उसको पहले बार देखूंगी, जैसे सुनी थी ऐसे ही देखने के लिए है क्या, कैसे फर्स्ट टाइम देखना है, चुनाव तो पहले कर चुकी है लेकिन अभी देखी नहीं, सुन सुन कर 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 ली। तब देवी पूजन करके जब वापस आ रही थी वो विवाह मंच की ओर जा रही थी वेदी की ओर, तो दो साइड में कई सखी हैं, सखी लोग सहेली साथ में चलते हैं, बिगुल बाजा बज रही है और पूरे सैनिक हर दो दो फीट में एक एक सैनिक घुड़सवार गजारूढ़ हथारूढ़ पदारोही सब खड़े हैं, सैनिक सशस्त्र सैनिक, कि उनको डाउट है कुछ गड़बड़ ना हो जाए, खड़े हैं तो सब देख रहे हैं कि सुरखुर में देवी कुल देवी पूजन हो गया, अभी मंच की ओर जा रहे हैं भाई मंडप की ओर। तो रुक्मिणी के मन में इतनी व्यग्रता आई, तो सही में क्या परम पुरुष आ चुके हैं, तो थोड़ा उनको देख तो लूं, कोई पास में है क्या, वेदी तो दूर दूर नहीं है मंडप, तो अपना जो उसको क्या बोलते हैं घूंघट घूंघट उठाने लगे, एक बार बोला देख तो लूं शायद सामने है कि कहाँ है, घूंघट उठाए, उसका घूंघट उठाई, दुनिया भर के जो लाखों सैनिक और सब बाकी देखनहारी सब देखना चाहते थे कि रुक्मिणी के रूप कैसा है, तो देखे नहीं थे, वो देखेंगे हमारे राजकुमारी, जैसे घूंघट उठाई एक यहाँ की देखने लिए, वो देखना चाहती थी वो कृष्ण कहाँ है उनको देखना चाहती थी, लेकिन बाकी सारे जो हजारों लाखों तो उनको उनको देखना चाहते थे, जैसे उनको देखे उनके रूप लावण्य को देख करके जो घोड़ा में बैठे थे धुम गिर पड़े, हाथी से गिर पड़े, रथ से गिर पड़े, सारे अपने अपने वाहन से धड़ाम 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 गिर पड़े सब, हाथ से बंदूक बंदूक जो था यंत्रपाती वो सब गिर पड़ा, वो भी गिर के पड़े बिल्कुल एक साइड में, एक झांकी दृश्य में गिर पड़े सब, अब गिर पड़े वो तो ढूंढ रही थी जिसको, अब वो सामने आ गए, बिल्कुल उनका रथ लैंडिंग किया, हाथ पकड़कर बोले बैठो चलो, क्योंकि दो तरफ से सशस्त्र वाहिनी थे सब तो संश्लेष पड़ेंगे उन्हीं के बीच में आकर उनको लोड करके रथ में चल पड़े, बेचारा वो 5 फीट दूर में मंडप है दूल्हा बैठा हुआ है मुकुट बांध करके, पुजारी बिल्कुल तैयार है सामग्री लेकर मंत्र पाठ करके आने से फेरी पड़ने वाला, गाय हाय 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 करते उठ करके देखे तो कहां चला गया, गया तो गया और क्या करें, रुक्मी चिल्लाया अरे क्यों कैसे ले लिया, अरे वो आके ले लिया, अरे इसे ले लिया, ग्वाला कहीं के ऐसे है गाय रखने वाला ऐसे ले लिया, हल्ला गुल्ला मचा, सब सैनिक उठे अरे पकड़ो मारो धरो दौड़ो पीछे सब, अब क्या होगा। वो तो बेचारा दौड़ भाग कर गए, बेचारा जो बर बनकर बैठा था वो तो रोते ही रह गया, वो बेचारा क्या करेगा, पहले तो फास्टिंग करता ना, फास्टिंग भी क्या होगा बेचारा, बेकार गया उसका। और बाकी सारे लोग उनको वेदी में बैठा छोड़कर भाग गए लड़ाई करने में, वो इतने बोर फील कर रहा था, बोले क्या करूंगा ना, मुझे खाने पीने के लिए देते हैं, बेकार हो तो गई, शादी तो नहीं होगा, अभी मिलने वाले तो नहीं, और वो मुझे छोड़कर चले गए उनके साथ झगड़ा करने के लिए। अब गए आप जा करके लड़ाई हुआ, आप जानते हैं जो भी हुआ। इस प्रकार रुक्मिणी देवी केवल भगवान के बारे में सुन करके उनके हो गई, हो गई मतलब भगवान आ करके द्वारका से उनको, देखो भगवान है, हम जिसको पूछते हैं आरती उतारते हैं, हमारे वंदनीय पूजनीय वरणीय प्रभु हैं, उन्होंने अपने जीवन का गृहस्थ धर्म का जो विवाह किए, फर्स्ट ओपनिंग बैटिंग ओपनिंग के शादी का सबसे पहले शादी किडनैप हरण कर दिया, लो कैसा रिकॉर्ड खराब नहीं। बता रुक्मिणी हरण, हम अभी तो कहते हमारे प्रभु ऐसा है, ऐसे शादी पहले शादी तो हरण करके किए, उठा लिए। लेकिन हम सिना बोलते हैं उठा लिए, लेकिन रुक्मिणी देवी तो कई दिन से उठने के लिए ही व्रत करके बैठी थी, इसके लिए पूजन करती थी, अगर उनका हरण ना होता तो मर जाती हो, तो उसको कैसे कहेंगे, भगवान उनका जीवन रखा किए। मतलब ये कहना है कोई भगवान के बारे में केवल सुने, सुन करके अगर मन में डिसाइड करे हे प्रभु मैं आपका होना चाहता हूं कि चाहती हूं, तब भगवान द्वारका से रथ लेकर के स्वयं आ जाएंगे, आपको जाना नहीं पड़ेगा, आ करके आपको सबके बीच से उठा कर ले जाएंगे, हरण करके ले जाएंगे, ये उनके स्वभाव है। और ये स्वभाव किस लिए, केवल श्रवण की महिमा सुनने में, श्रवण भक्ति का प्रथम अंग है, ये भक्ति के प्रभाव में कहना चाहता हूं, ये भक्ति, ये तो बालिका थी और ये तो 5 साल के नादान लड़के थे, एक दासी पुत्र थे 5 साल के, कोई अभी अवायु भी नहीं पढ़े होंगे, वो तो चिट्ठी लिखती थी, उनको लिखना भी नहीं आता था, ऐसे नादान गवार 5 साल का लड़का केवल 4 महीने में, रुक्मिणी तो कई दिन सुनी होंगी क्लास, 4 महीने में ऐसे हाल हो गया कि उनको तो उठाकर नहीं लिए, उनके चित्त को बदला दिए। तो नारद जी कहते हैं व्यास जब मैंने इस प्रकार 4 महीने तक जब गए, जिस दिन मुझे जो मंत्र दे गए, गुह्यतम मंत्र दिए, गुह्यतम मंत्र के बारे में थोड़ा यहां चर्चा करेंगे, यह कहे कि भगवान ने जो अपने मुख से जो मंत्र बताए थे उपाय, वो मुझे दे दिए, ये महामंत्र मुझे दिए। तो भगवान ने अपने मुंह से क्या कहे हैं, प्रख्यात भगवद गीता, भगवान ने अपने मुख से पद्मनाभ मुखम विस्तृत भगवद गीता है, भगवान ने गीता में स्वयं उद्घोष कर कहते हैं कि ये गुह्य ज्ञान है, ये गुह्यतम ज्ञान है, गुह्यतर ज्ञान है, ये गुह्यतम ज्ञान है, बोले ना नहीं, जिसको भगवान ने गुह्यतम ज्ञान करके कहे हैं वो ज्ञान क्यों कौन सा था, मनमना भव मद भक्तो मदियाजी मां नमस्कुरु, भगवान ने अपने मुख से इसी को गुह्यतम ज्ञान करके कहे, गुह्यतम मतलब सुपरलेटिव डिग्री, जैसे गुड बेटर बेस्ट, गुड से बेटर और अच्छा है ना, बेटर से बेस्ट और अच्छा है, तो इस प्रकार गुह्य गुह्यतर गुह्यतम, इस ज्ञान क्या है, केवल भक्ति और कुछ नहीं, यही है गुह्यतम ज्ञान, मन मना भवमत भक्तो, मेरे भक्त मनो मुझे प्रणाम करो, मुझे पूजा करो, बस यही गुह्यतम ज्ञान। भगवान ने जब इसे ज्ञान की जो कहते हैं, सबसे प्रथम ज्ञान होता है सर्वसाधारण के लिए, जब नए नए जो आए हैं उनके लिए ज्ञान जिसको दिया जाता है, जिसको ज्ञान करके हम कहते हैं, वो है भक्ति तो दिया जाएगा ना, इसके बिना ज्ञान में नहीं उसका महत्ता नहीं रहेगा, वो होगा भक्ति मिश्रा कर्म। कर्म को उपदेश देते हैं उसको बोलते हैं साधारण ज्ञान है। भक्ति थोड़ा बहुत उठ चढ़ेगा लेकिन कर्म बात कहेंगे, कर्म के उपदेश करते हैं। उसके बाद में थोड़ा प्रमोशन हुआ आगे बढ़े तब उनको बोलेंगे गुह्य ज्ञान देंगे। अब तो साधारण ज्ञान देते, अभी गुह्य ज्ञान दे। गुह्य ज्ञान क्या ना, अभी कर्म भक्ति मिश्रा कर्म था, अब बोल देंगे नहीं अभी भक्ति मिश्रा ज्ञान, ज्ञान देंगे भक्ति के साथ, ये गुह्य ज्ञान है। थोड़े और प्रमोशन हो जाएगा, बोलते हैं कि अभी गुह्यतम गुह्यतर ज्ञान देंगे। गुह्यतर ज्ञान क्या है, बोलते हैं ज्ञान मिश्रा भक्ति। इसमें ज्ञान मिश्रा भक्ति को गुह्यतर ज्ञान बताया गया। फिर उसके गुह्यतम ये ज्ञान शून्य भक्ति, केवला भक्ति, उसमें और कुछ नहीं, शुद्ध भक्ति को गुह्यतम बताया गया, भगवान ने बताया। तो इस गुह्यतम ज्ञान को जो उन्होंने नारद जी को दे करके चले गए लास्ट दिन में, नारद जी इसको लेकर के मनन करने लगे, भजन करने लगे। तो बोलते हैं कि मैं फिर तृप्त हो गया। तो व्यास जी के मन में बड़ा उत्कंठा हुआ, भले भाई देखो मैंने हजारों साल बिताया, कहां स्थान कैसा है, नारायण आश्रम अलकनंदा सरस्वती किनारे हिमालय की चोटी में, इतने सुंदर तप वातावरण है, निर्मल पवित्र वातावरण में, और कितने ध्यान धारणा समाधि करके क्या क्या वेदांत ज्ञान तक निष्ठा किया, समाधि किया, काम नहीं बना। और ये कहीं गांव के बीच में किसी के घर के आंगन में, अब चार महीना सुना हो गया। व्यास जी का तो मन में एक बार उद्वेलित हुआ, भक्ति के बतास आने लगा। हवा भक्ति क्या है, मैंने अभी तक तो उनका जो ज्ञान फान था सब खत्म हो गया, भक्ति की धारा बहने लगा। तो उन्हें फिर पूछे, बोले नारद जी फिर आप बताइए, फिर वो लोग जब चले गए फिर आपका क्या हुआ, वो लोग चले गए फिर आपका क्या हुआ, तो आपने कैसे उनके संग छूट जाने के बाद तो फिर आप अकेले हो गए होंगे, फिर तो कोई रहे नहीं, फिर कैसे चला आपका, आप कैसे नारद बने। तो उनके उत्सुकता और कुतूहल प्रश्न को सुन करके नारद जी ने फिर वर्णन करते हैं अपने पूर्व परचरित का। बोलते हैं कि व्यास जी जब उन्होंने चले गए चतुर्मास पुरा करके, मुझे तो गुह्यतम ज्ञान दे गए थे, तो मैंने फिर अपने माता जी के पास आ गया और मैं माता जी का इकलौता बेटा था, इसलिए मेरे माँ ने हमेशा मेरा ध्यान रखती थी, अच्छा कपड़ा पहनाना चाहती थी मुझे, अच्छा खाना खिलाना चाहती थी मुझे, हर प्रकार से अच्छा देखना चाहती थी, लेकिन उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती थी क्योंकि वो नौकरानी थी, दूसरे की पराधीन थी, दूसरे की दया पर निर्भर करती थी, जो उनको मिलेगा कहीं इतने से तो करेगा, मुझे चाहती कन्वर्ट स्कूल में पढ़ाए, फीस नहीं पढ़ा नहीं सकती थी, ऐसे कपड़ा पहनाए पैसा नहीं पढ़ा कर नहीं सकती थी, बेचारी हमेशा दुखी रहती थी, हमेशा दुखी रहती थी। मैं देखता था माता जी को परेशानी रहती थी क्योंकि वो चाहती थी मुझे खूब अच्छा बनाने के लिए, लेकिन उनके पास समर्थन नहीं होती थी, तो इसलिए वो भी दुखी रहती थी। मैं उनका दुख देखकर सोचता था ये क्यों दुखी होती है, और मैं जो आनंद में था इस मंत्र को जप करके, और मुझे लगता था ये माता जी बेचारी कितने काम करती है सुबह से शाम तक लेकर के, और काम के लक्ष्य रखती है मुझे प्रसन्न करने के, मैं तो पहले से प्रसन्न हूं तो क्यों इतनी परेशानी होती है, लेकिन वो मानती है और सोचते हैं कि मुझे हमेशा खाने के लिए पहनने के लिए भी मां को बुलाना पड़ता था। नारद बोलते मैं तभी सोचा कि प्रभु अगर ऐसा कभी आपकी कृपा हो तो मैं और आप और मैं, हमारा संबंध ऐसे हो जाए, मैं आपका हो जाऊं और आप मेरा हो जाए, तब जाकर काम बनता, बीच में मां है कैसे होंगे। जब मैं इसे विचार कर रहा था तो भगवान ने मेरा बात सुन ली, क्या किए बोले ज्यादा दिन नहीं, दो चार दिन में वो चले जाने के बाद में भजन करता था। और गांव लोग तो मुझे बहुत चिढ़ाते थे, बोले देखो ये लड़का तो बाबूजी बन गया, स्कूल भी नहीं जाता है, पढ़ता भी नहीं, खेलता भी नहीं, ये क्या करता है, बैठ कर बाबा बन गया, तो भजन कर रहा है। माता जी बोले क्या करूं, जैसे हो बेटा है, जो उनका इच्छा है इसे करने दो। लेकिन वो मुझे कुछ अच्छा बनाना चाहती थी। इस विचार में एक दिन शाम के समय में वो गाय धोने गई थी, उसके घर में काम करती थी, वो आते आते रास्ते में सांप जाती थी, पता नहीं चला उनके ऊपर पैर पड़ गया और सांप दंशन की वही मर गया। भगवान ने मेरा बात सुन ली, उनके और मेरे बीच में मां को हटा दिया। बोले तो क्यों ये बीच में रहेगा, सारे दुनिया के लोग गांव वाले लोग बोले देखा भजन कर रहा था, मिला फल, बदमाश लड़का, काम नहीं धंधा नहीं पढ़ने यही कर रहा था बैठ के राम राम। अगर उनके जगह पर हम लोग होते तो हम उसी दिन से फेंक देते माला फला झोली, बोले चलो काम करते अगर बेकार है, हम भजन करते, हमारा ऐसे हुआ वहां मर गई हमारा। लेकिन 5 साल के बालक नारद जी ने सोचे हे प्रभु आपकी अहुत की कृपा है, आपने इतनी कृपा किए कि आप और बीच में मां को हटा लिए, हम दोनों का संबंध करवा दिया, अब तो हमारा बीच में कोई नहीं, मैं आपका हूं आप मेरे हैं, बस अब भोजन के लिए पहनने के लिए नहाने के लिए मैं मां को नहीं डक पाऊंगा, वो तो है ही नहीं। तो नारद जी ने बोलते हैं कि तुरंत जो भी उनका घर बाड़ी कुछ ज्यादा कोई संपत्ति था नहीं उनका, सब कुछ छोड़ करके अकेले इसी उम्र में अकेले उत्तर दिशा की ओर चल दिए। कैसे चले, हरिं कृत्वा हृदयंगहि, हृदय में भगवान है इस बात को तो जो महात्मा ने सिखा दिए थे, नारद जी ने बताया उस 4 महीने के भजन के प्रभाव से मेरा इतने समझ आ गया था, बालक अवस्था था लेकिन इतने दृढ़ समझ आ गया था मेरे बीच में कि मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं, ये बात मेरा मन में दृढ़ीभूत ज्ञान आ चुका था। इसी ज्ञान को तू 1000 साल के बाद में तेरा मन में नहीं उतरा, मैं 5 साल के उम्र के बालक था, अनपढ़ बालक था, 4 महीने के सत्संग में मेरे मन में दृढ़ हो गया। इसी बात को भरोसा करके बिना रोए बिना धोए अकेला चल पड़ा, 5 साल के लड़का था मैं, चल पड़ा उत्तर दिशा के, चलते चला, रास्ता में चलकर जाना था कोई, रास्ता में कई नदी कई पर्वत कई गांव कई सुंदर सुंदर जगह बगान सब आया, मैं किसी को आकर्षित नहीं हुआ, कई कई ऐसे जगह आया, कई लोग मुझे मिले, बोले बेटा कहाँ जा रहा है बालक, अरे अच्छा खासा लड़का आ जाओ, कोई तरह है नहीं ना मेरा कोई नहीं दुनिया में, आओ हम तुझे अपने घर में रखेंगे, आपको शादी करा देंगे, आपको नौकरी दिला देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, आ जाओ घर पर दिला देंगे। बहुत प्रलोभन भी दिखाए, बहुत प्रकार से प्रलोभन, बहुत प्रकार के आकर्षण भी हुआ, ऐसा कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे ये दिला देंगे, बहुत दोनों तरफ से बोलने लगे, लेकिन मेरा मन में तो ठान हो चुका था उनके कृपा से कि केवल मेरे तो कृष्ण है और कृष्ण का मैं हूं बस, और कुछ नहीं मुझे चाहिए। इसी के ऊपर भरोसा करके किसी आकर्षण के प्रति प्रलोभन के प्रति मैंने दृष्टि नहीं दिया, चल पड़ा, चलते चला, चल करके चलते चलते 1-2 दिन तक चला बिना खाए पिए, इतने थक गया, श्रांत क्रांत हो गया और शरीर में शक्ति नहीं, चला नहीं गया मेरे से। तब इस अवस्था में भगवान ने मुझे सहायता किए, सामने देखा कि बहुत सुंदर एक झरना नदी कुंड है, निर्झरिणी कुंड है, बहुत सुंदर शीतल जल है, बोला चलो पानी तो पी लेता हूँ, खाने के लिए कुछ नहीं क्या है, जाकर के वहां कुंड में उतरा, इतना सुंदर शीतल पहाड़ की झरना था, उसमें स्नान किया, स्नान करके अंजलि भर के पानी पी गया, पेट भर के पानी पी करके उठा, थोड़ा अंग शीतल हो गया, मन थोड़ा शांत हो गया, एक बड़ा पीपल का पेड़ था, तो पेड़ के नीचे आकर बैठ गया, ओह बहुत थक गया अभी, पता नहीं कहाँ तक जाऊं, कोई दिशा ही नहीं पता है, घोर जंगल है, हिंस्र जंतु का शब्द आता है, कई सांप कोई उल्लू कोई क्या क्या, इस भयानक स्थिति में कहाँ जाऊं, चलो कोई नहीं प्रभु तो हैं, उन्हीं के ऊपर भरोसा करके उस पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठ करके जो मंत्र मुझे गुह्यतम मंत्र दिए थे उन्होंने जाते समय में, उस मंत्र को आंख बंद करके मन स्थिर करके उनको जप स्मरण करने लगा, जप करने लगा। बोले जब बिल्कुल मन से संसार बीत चुका था, एकमात्र माँ थी वो जा चुकी थी, और घर परिवार गांव वाले कोई बंधु बिरादर कोई नहीं थे, पूरा अकेला अकेला ही था। रास्ता में जो कुछ मुझे आए थे हेल्प करने के लिए, किसी का हेल्प नहीं लिया। अब ये घोर जंगल में केवल मैं ही अकेला था, मुझे छोड़ करके बाकी सांप बिच्छू बाघ भालू हिंस प्राणी थे और कोई नहीं थे। इस निर्जन वन प्रदेश में स्नान करके जल पी करके पीपल के पेड़ बिल्कुल शांत चित्त हो करके हाथ जोड़ करके वही मंत्र को जप करने लगा। और जो 4 महीने तक वो महात्माओं ने मुझ जो भगवत रूप के वर्णन सुनाए थे, ऐसे रूप है, ऐसे किरीट है, ऐसे कुंडल है, ऐसे आंख है, ऐसे कान है, ऐसे नाक है, ऐसे कुस्तु मणि धारण के जो रूप मुझे वर्णन कराए थे, इसी रूप को चिंतन करने लगा। वही अभिष्ट रूप को चिंतन करके उस मंत्र को जप करने लगा। आप जब देखा कि मेरा कोई नहीं है, अभी 2 दिन हो गया खाया भी नहीं है, क्या खाऊं पता भी नहीं है, कहां सोऊं पता भी नहीं है, क्या करूं, बिल्कुल हताश चित में केवल मात्र भगवान के ऊपर भरोसा करके जब उनको मंत्र जपने लगा तो मुझे रोने आया। बोलते मेरे 2 आंख से आंसू बहने लगा छल छलाते हुए, और धीरे धीरे जैसे मैं तन्मय होकर के इस मंत्र को जपा आंख से आंसू बहने लगा, तो हठात मेरे अंतर्दृष्टि में मेरे हृदय में वही रूप दर्शन हुआ मुझे, जिस रूप के बारे में वर्णन मैंने सुना था, जिस रूप के बारे में वर्णन सुना था वही रूप मुझे दिखाई पड़ा। एक झलक दृष्टि बिल्कुल हूबहू वही भगवत रूप, इतने उज्ज्वल तेज रूप था वो, जिसको देख करके 1 सेकंड में एक झांकी में मेरा संपूर्ण शरीर रोमांचित हो गया, एक एक रोम खड़े हो गया, बिल्कुल पुलकित हो गया, मैंने अंग अंग सब ज्ञान से भर गया, इतने प्रशांत चित्त हो गया, मैंने न जाने कितने आनंदित हो गया, कोई आनंद को प्रकाश नहीं किया जा सकता, इस स्थिति आ गया 1 सेकंड दर्शन करके। लेकिन बस 1 सेकंड ही था, मैं जैसे खुश हुआ इतने पुलकित हो गया, बिल्कुल कंपमान होकर के इसे प्रणाम करने गया तो अंतर्धान हो गया, सीना रूप खत्म चला गया, फिर दर्शन नहीं हुआ। जैसे दर्शन नहीं हुआ रूप चला गया तो मैं तो बेचैन हो गया, आंख खोलकर खड़ा हो गया, इधर उधर देखा, फिर बैठ करके नाक बंद किया, आंख बंद किया, ये किया, जितने सारे कुछ करना प्रयास करने लगा, विकल होकर के रोने लगा, क्या हो गया, कहां चला गया, वो कैसे होगा। इस विकल उत्कट विकल अवस्था में जैसे कोई गरीब व्यक्ति हो, धन की आशा रखता है, कोई 2-4 हजार रुपये मिल जाए, मेरा काम चल जाए, बहुत आशा रखता है, तो हठात तुमको 2-5 लाख रुपया मिल जाए तो कितने खुश होगा, खुश हो जाएगा ना। तो खुश हो रहा था, लेकिन घर में रखता रखते रखते रखा था, दूसरे दिन चोरी हो गया सारे, तो जितने दुख था उसका कितने गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, उसका बढ़ जाएगा ना, पहले जितना धर्म नहीं था, जितना दुखी था, उसका कई गुना ज्यादा दुखी हो जाएगा। अरे आया तो चला गया सारे, आया होकर के नहीं हो पाया, तो वही उनको लगा, अरे भगवान तो नहीं थे, देखा अभी देखा मैंने खुद अपने सामने अपने आंख से देखा, फिर हरा गया, खो गया। इससे उत्कट दुखी विकल हो गया, उन्होंने बेचैन होकर जो परेशान होने लगा। तो इस अवस्था में भगवान ने रूप तो नहीं दिखाए, आंख से कान से दिखाए, वाणी बोले, इसे मेघ गर्जन से गंभीर वाणी सुनाई पड़ा। अब वो वाणी जिसे पूरे कान के अंदर जाकर शरीर में अमृत चिंतन करने लगा, जैसे रूप के प्रभाव हुआ था आनंद, ऐसे वाणी के प्रभाव से इतने आनंद हो गया, हम शांत हो गया उस वाणी को सुन करके, देखने लगा इस दिशा से आ रहा है आकाश से वाणी, भगवान ने इस वाणी ने मैंने कहे, बेटा नारद दुखी मत हो, इस शरीर में इस जीवन में तू मेरा और दर्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसके हृदय में थोड़ा सा भी कुछ कामना के विकार लेस रह जाता है, जिसका चित्त निर्मल नहीं हुआ है, वो मेरा दर्शन तो कभी कर ही नहीं पाते हैं, कभी नहीं कर पाएंगे। तो नारद जी, मुझे क्यों फिर दर्शन दिया आपने? अगर मेरा चित्त निर्मल नहीं हुआ है तो भगवान ने बोल रहे हैं कि बेटा नारद, आप अकेले हो, बालक हो, आप हताश न हो जाए कि कोई भगवान है कि नहीं, तो इसीलिए मैं दिखा दिया कि मैं हूं और आपके साथ ही हूं, बिल्कुल नजर रख रहा हूं आपको, बड़ी चिंता मत कर। यही विश्वास दिलाने के लिए, आपको यही भरोसा दिलाने के लिए कि अपेक्षा कर, मैं हूं, डरो मत, हिम्मत मत हार, यही भरोसा दिलाने के लिए, यही लालच दिखाने के लिए एक झांकी तुझे दिखा दिया एक मिनट के लिए। अब भरोसा कर, मैं हूं। अब अपने कर्म के फल को भोग करके पूरा खत्म करो और अविचल भाव से मेरा नाम में श्रद्धा करके भजन करो। जो आपको भोगा भोगे उसे भोग कर सब खत्म कर दो। इस जीवन के बाद में फिर मैं अपना बुकिंग अभी से कर देता हूँ, एडवांस बुकिंग तो मेरे पास आए, कन्फर्म टिकट हो गया आपका। लेकिन कब तक मैं डेट नहीं बताऊंगा, आपके इस शरीर बात होने के बाद। अभी इस शरीर में तुझे इस बात को स्मरण रहेगा और इस यहां को देख करके इसी भाव से भजन करते रहो, किसी में आसक्त न हो, अनासक्त चित्त से घूमते रहो, भजन करते रहो। जो आपके भाग्य में आपको मिलेगा, जितने सुख मिलना है वो मिलेगा, जितने दुख मिलना है वो मिलेगा, उसके लिए चिंता मत करो। जो है उसको भोग लो, भोग करके सब खत्म करो। और अंत में मेरा अवश्य भगवान हमेशा ही कहते हैं, गीता में भी कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं ये वेदी तत्वतः। मेरा जन्म कर्म के जो दिव्य के बात को जो तत्व से जान लेता है, तो उसका क्या होगा, इस शरीर छोड़ने के बाद मेरा पास आएगा, तुरंत नहीं आ जाएगा ना, ये शरीर का कोटा तो पूरा करना ही पड़ेगा। जितना प्रारब्ध कर्म और ड्रा किए हैं उसको भोगेगा कौन, आपको भोगना पड़ेगा, उसको पूरा करो फिर आएंगे। तो नारद जी बता बोले, इसका ये जो शरीर आपको मिला है उसको पूरा करना पड़ेगा तुझे, तो उसके बाद तो जाएगा। लेकिन मैं आपकी भरोसा देता हूं, ये जो बात है कल्प तक आप विस्मरण नहीं होगा, स्मृति रहेगा आपका, स्मृति रहेगा। ये भक्ति की एक महिमा है। नारद जी एक कल्प के पहले एक शूद्राणी के पुत्र थे, 5 साल के बालक थे। अब उनके याद रहा है बात सारे, अभी व्यासदेव को बता रहे हैं। यही भक्ति का प्रभाव है। आप बोलेंगे मनुष्य है बात, ऐसे नहीं। आप भागवत में वर्णन आता है राजर्षि भरत, उन्होंने राजपाट छोड़ करके जंगल में चले गए, इतने उत्कट भजन किए कि भक्ति के भाव स्तर में आ चुके थे। लेकिन भगवत इच्छा से एक बार उनको ऐसे घटना हुआ जंगल में, जब उन्होंने अपने भजन के लिए जो विग्रह किए थे, फूल माला देने के लिए फूल लाने के लिए गए, जा करके जंगल से कहीं बगीचा से फूल तोड़ते थे। सुबह का समय था तो एक झरना था, एक नाला था साथ में, फूल तोड़ते थे तो कुछ हिरण के झुंड यहाँ चरते थे घास, चरते उनको क्या पड़ी है, अपना फूल तोड़ते थे। तो हठात एक शेर का दहाड़ हुआ, शेर ने आवाज किया, उसको सुन करके पहली बार सब हिरण ने सब अपने कान खड़ा कर दिए, शेर की आवाज। दूसरी बार जैसे शेर की आवाज आए सब भागे दौड़े। इस हिरण के झुंड में एक हिरण थी जो गर्भवती थी, वो बेचारी दौड़ नहीं सकती थी, दौड़ के गए सामने नाला है, क्या करके बेचारा खड़ा हुआ। तीसरी बार जब शेर के आवाज दहाड़ सुना तो उसको बोला तो मरूंगा, सब भागे नाला है, तो पूरी ताकत लगा करके छलांग लगाई वो गर्भवती हिरण ने। छलांग तो लगाई पूरी ताकत डर के मारे, तो भरत जी के सामने घटना हो रहा था, बिल्कुल फूल के डालिया हाथ में लिए थे, फूल उनके सामने हो रहा है सुबह सुबह समय। वो हिरणी ने छलांग लगाई, नाला को पार कर गई, करके दुम इस तरफ गिरी, मर गई। और उनका जो बेटा था वो प्रसव होगा और नाला में गिर गया पानी में, वो बह रहा था। सद्य जात शिशु हिरण शावक पानी में बह रहा था और उसके माता हिरणी मर गई उस तरफ फिर कर। भरत जी देखते हैं जंगल में निर्जन वन में कोई नहीं है, मेरे सामने मर जाएगा वो तो, कोई बचाने वाले नहीं है, क्या करूं, इतने तो थोड़ा बचा देना चाहिए कम से कम। पानी में चले गए जाकर उसको उठा के ले आए, जो सद्य जात हिरण शावक को उठा के ले आए, ला करके बाहर में खड़ा कर दिया, धूप उठा था धूप में थोड़ा खड़ा कर दिया। ये तो आपको भी पता होगा शाकाहारी और आमिषाहारी के इतफाक थोड़ा बहुत विचार करते हैं। जो लोग आमिषाहार करते हैं जैसे बाघ है बिल्ली है ऐसे, हम लोग भी इधर उधर बहुत सारे बना बनाया खाते हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं खड़े होने में कितना टाइम लगता है, एक साल ना, एक साल। और जो गाय है बकरी है हिरन है उनके बच्चे खड़ा होने में कितना टाइम लगता है, आधा घंटा, आधा घंटा, यही है शाकाहार का प्रभाव। हाँ, आधे घंटे में उठ के दौड़ेंगे और हो साल दो साल लगेगा। तो हिरण को शावक को ला करके खड़ा के थोड़ा धूप लगाओ, खड़ा हो गया उठ करके चलने लगा फिट। और जब सद्य जात हिरण शावक होता है और कोई नहीं उसका वही उनको बचाए, तो उन तो कोई नहीं था, कोई देखा नहीं था, पहले बार जो आंख खोलकर देखा तो दादा श्री भरत को देखा, तो उनने फूल तोड़कर जब वो अपने कुटिया में गए हिरण उनके साथ साथ उनका पीछे पीछे चला गया, वो जाकर बैठ के पूजा के वहीं बैठा रहा, बच्चा है वो क्या जानता है, पहली बार तो फर्स्ट दिन उनका जीवन का। तो फिर बोले देखो मेरे ऊपर भरोसा कर रहे थे, थोड़ा बहुत भोग लगाया तो कुछ घास लगा उसको खिलाया तो खाया वहीं बैठा, मतलब 15 दिन महीना दिन तक तो बिल्कुल उनको साथ रहा, तो पहला दिन डे वन से उन्हीं के साथ परिचय हुआ, तो क्या करेगा और किसी को जानता नहीं था, हिरणी को देखा नहीं, हिरण को सबको देखा नहीं, भरत जी को देखा वही उनको पानी से उठा के लाया, तो उन्हीं के साथ उनके संबंध हो गया। तो जो महीना दिन उन्हीं के भरोसा में रहा, प्रतिदिन उन्हें जाते थे फूल फल लाने के लिए, तो उनके लिए भी थोड़ा घास पास लाते थे तो उनको खिलाते थे। एक दो महीना के बाद तो इतने संपर्क संबंध हो गया हिरण के साथ, तो वो जब भजन करने बैठेंगे वो आकर पास बैठेगा, किसे होगा उनके, उनको सूंघेगा चाटेगा इधर जाए, और कभी कभी वो दूर चला जाएगा तो देखें कहाँ गया, कहाँ गया, कभी नहीं आया, आज क्या हो गया, अब तक क्यों नहीं आ रहा है, इतने उनके साथ आसक्त हो गए। तो धीरे धीरे समय बढ़ने लगा, वो हिरण भी यंग हो गया, साल दो साल का, दो साल का हो गया, तो बिल्कुल अभी दौड़ना जंगल में चलना बहुत अपना फिट हो गया, और भरत बूढ़े हो गए, वो युवक हुआ वो बूढ़े हुए, बूढ़े हुए अब दृष्टि शक्ति भी मंद पड़ गया, जंगल में तो कोई चश्मा दुकान नहीं है कि चश्मा लगा ले, यहाँ था नहीं, वो देख नहीं पाते थे, अब वो दूर चला जाता था, अपेक्षा करते थे शाम को, फिर आता था उन्होंने क्योंकि वहीं उनका घर था, फिर आता था, दूर चला जाता था, तो बड़ा हो गया उन्होंने शक्तिशाली है, घूम घूम कर कहीं जाता था चलते, फिर आ जाता था, आके उनके पास सोता था बैठता। और एक दिन बारिश के समय घनघोर बारिश होने लगा, बहुत जोर से हवा चलने लगा, बारिश होने लगा और ओला पत्थर भी पड़ने लगा, शाम होते गया वो आया नहीं, वो भरत जी बेचारे इतने चिंता में पड़ गए, खुद खाए नहीं पिए नहीं बैठे, क्या हो गया आज मेरा हिरण क्यों नहीं आया अब तक, इतना बारिश में कहाँ होगा, इसी बारिश चल रहा है, पता नहीं कोई पेड़ तो नहीं गिर गया उसके ऊपर, कोई पशु तो नहीं खा गया उसको, बहुत सोचने लगे उसके बारे में। अब बारिश देर तक चलने लगा, तो जंगल में तो कोई इलेक्ट्रिसिटी की लाइट तो था नहीं, तो रात ज्यादा हो गया, उसके बाद बारिश और पवन छूट गया लेकिन हिरण नहीं आया, और भरत जी की चैन नहीं, तो उन्होंने उड़ करके उनको खोजने के लिए वन जंगल में चले, जंगल में निकले, एक तो दुष्ट शक्ति मंद था, दूसरे बारिश के कारण रास्ते में कहीं पानी भरा हुआ था, कभी कहीं गाड़ा कभी क्या को दिखाई नहीं पड़ता था, किसे पता चलेगा पानी भरा हुआ, ऐसा अंधकार भी था, तो इसी में एक लाठी लेकर चलते थे, आवाज करते थे उनका जो नाम रखे होंगे हिरण का, नाम लेकर जंगल में चले गए, कहीं एक गड्ढा में गिरे ठोकर खाए हो मर गए, शरीर छूट गए, हिरण की याद करते हुए शरीर छूटा, तो मरने का फॉर्मूला जो भगवान ने दिए वही लागू होता है, अंत काले चमा में स्मरण मुक्त कलेवरम तम तम एवीत कुंती सदा तद्भाव भावित। अंत समय में जिसको भावना होगा, जिसको सोचेंगे आप वही बनेंगे, यही फॉर्मूला है। इसलिए कहते हैं अंत भला तो सब भला, अंते नारायण स्मृति। लास्ट में अगर भगवान की याद नहीं आया तो सब बेकार हो गए। साधन करो, भजन करो, मरते जान ले, मरने के समय हरिनाम याद आए तो बेकार, साधन से बेकार हो गया। अब राजर्षि भरत का कितने बड़ी त्याग किए उन्होंने, कितने भारी अवस्था था उनका भजन का, अंत बेकार हो गया, हिरण बने। हिरण की जोनी में भी उन्होंने हमसे कई गुना ज्यादा भजन किए, ऐसे कहते हैं। उनका जन्म कहां से, हरिद्वार के आसपास के जंगल में हुआ था, तो उन्होंने घास नहीं खाते थे, हिरण के झुंड में रहते हुए सूखा पत्ता खाते थे, व्रत करते थे। उन्होंने व्रत करते हुए उनके याद आया, ना मैंने यहां था, तपस्या कर रहा था पुलस्त आश्रम में, इसी कारण से मेरा पतन हुआ। तो चलते 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 अकेला नेपाल चले गए, पुलह आश्रम चले गए। पुलह आश्रम में जाकर पहुंच करके भागवत कहता है, गंडकी नदी के जो सड़ग्राम के नदी है, सख्यात वृंदादेवी है, उस जल में आकंठ पानी में प्रवेश करके उस हिरण ने भगवान को स्मरण करते हुए अपने शरीर छोड़ दिया, श्लोक उच्चारण करते हुए शरीर छोड़ा उस हिरण ने। इस प्रकार शरीर छोड़ा, तुरंत उनको ब्राह्मण शरीर में जन्म मिला। तो एक हिरण भी छोटा सा जीव है, वो भक्ति के प्रभाव से उनके याद रहा, भुला नहीं उन्होंने। अगर आप भक्ति किए होंगे, अगर पतन भी हो जाए किसी कारण से, कोई नीच जोनी में भी चले जाए, तो डरने का कोई नहीं, फिर उठ जाएंगे। लेकिन बाकी किसी मार्ग में गए तो कोई पता नहीं, भरोसा नहीं। अगर पतन हुआ नीच जोनी में आ गए तभी कोई डर नहीं। अब एक डर रहता है हम लोग के लिए, भजन करने वाले साधन तो करते हैं लेकिन हमेशा डर रहता है अपराध का, वही सबसे डेंजर है। इतने क्योंकि हम साधक शरीर है, इस माया जगत में रहते हैं, उस जगत में अपराध का बोझ इसने बढ़ा रहता है, पता नहीं कैसे कब हो जाता है। बोलते इसमें भी डर नहीं, थोड़ा सतर्क रही है लेकिन कोई डरने की बात नहीं। चित्रकेतु महाराज जब भक्ति शुरू किए, भजन किए, इतने मैच्योर नहीं थे। एक बार शंकर जी के साथ कुछ भला बुरा बात कर लिए तो पार्वती जी उनको अभिशाप दे दिए, क्या क्या बिगड़ा होगा, असुर बन गए। असुर बन करके देवराज इंद्र भी बोलता कि मैं फेल, देवराज होकर के वृत्तासुर बने उन्होंने। वृत्तासुर असुर अवस्था में जो भक्ति की, कोई बड़े बड़े देवेंद्र जोगिंद्र मुनिंद्र भी नहीं कर पाएगा। ये प्रभाव है भक्ति का, अगर कोई अभिशाप दे तभी भी ना बिगड़े, नीच जोनी में जाए तभी भी ना बिगड़े, किसी भी स्तर में वो आपको सहायता करेगा, बचा देगा। तो नारद जी कहते हैं इस प्रकार मैंने उसको जो भजन किया था उसके प्रभाव से भगवान को दर्शन किया और भगवान अप्रकट हो गए, और मुझे उनके सुधा वाणी से मुझे आश्वासना दिए कि नारद आप घूमते रहो और मेरा नाम जप करते रहो, कोई चिंता मत करो, जो आपका कर्म के अनुसार भोगा भोग है उसको प्राप्त कर लो। तो बस उस दिन से मुड़ करके चल पड़ा, जहां कोई मिल गया खाने के लिए खाता था, कोई नहीं मिला तो सो गया, बस नाम जप करता था, रोता था, कोई कपड़ा मिल गया तो पहन लिया, नहीं मिला तो नहीं, उसमें क्या, बोला चलता था, हमारा जिंदगी चल रहा था। कोई ऐसे करते करते अपेक्षा कर रहा था कब समय आएगा, ऐसे करते करते एक दिन अपेक्षित समय आ गया। भजन करते करते मेरा शरीर छूट गया, शरीर छूट गया तो सीधा मैंने ब्रह्मलोक गया, और वहां पे अपेक्षा किया एक कल्प। एक कल्प के बाद ब्रह्मा जी समस्त ब्रह्मलोक की वासी के साथ प्रवेश करते हैं कारण और नायक विष्णु में, बोले वे प्रवेश किए। एक कल्पांत में दूसरे ब्रह्मा जब आए, दूसरे सृष्टि शुरू हुआ, तब मैं फिर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बना इस ब्रह्मा जी के साथ। फिर भगवान की इच्छा से ये दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, ये जो वीणा यंत्र मुझे भगवान ने दिया डायरेक्ट, देवदत्त इमंग वीणा, उसको गा करके अब इस शरीर नारद शरीर में मैंने भक्ति के प्रचार करना है, ये मेरा स्थिति। मतलब नारद जी ने इस कहानी के अपने आत्मकथा के दौरान अपने जीवनी के द्वारा भक्ति के प्रणाली प्रेम प्राप्ति के विधान बता दिए कि इससे छोटी उम्र से भी श्रद्धा साधुओं के संग भजन की क्रिया फिर अनर्थ निवृत्ति फिर रुचि फिर निष्ठा आसक्ति भाव और प्रेम एक के बाद एक सोपान अपनी पूरे जीवनी में वह बता दिए भक्ति की प्रणाली। उसी को सुन करके महाज्ञानी महामुनि व्यास आप सोचे कि मेरे जीवन बेकार है, भक्ति के बिना तो कुछ भी नहीं, इतने सारे ज्ञान ध्यान करने से क्या मतलब है। तो नारद जी कहते हुए नारायण नारायण कहते चल दिए, तो व्यासदेव तुरंत भगवत चिंतन में बैठ गए। तो महा भगवत अवतार थे, निश्चिंत रूप से गोविंद चरण को ध्यान करने लगे, ध्यान करके उनके प्रभाव से उनके दर्शन किए, समाधि स्तर में दर्शन करके बिल्कुल उपलब्धि किए भगवत लीला का, और विशुद्ध भगवत लीला को लिपिबद्ध किए। वो जो लिपिबद्ध किए जो ग्रंथ हुआ इसी का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, इस स्तर में उन्होंने किए। उसको करने के बाद तब सुत गोस्वामी कहते हैं कि देखो इस प्रकार उन्होंने लिपिबद्ध किए और उनका किसी को पढ़ाएंगे सोचते थे तो कोई योग्य पात्र नहीं था, तो उनके पुत्र जो सुखदेव गोस्वामी वो जन्म से निर्ग्रंथ पुरुष थे, महाविरक्त जन्म से ही निकल के चले गए थे, लेकिन कभी ऐसा समय आया हरिर गुण आक्षिप्त मती, भगवान के गुण के उनका चित्त इतना आक्षिप्त था, भगवान के गुण को सुन करके उनका गुण ऐसा बहुत खींच लाया उनको घर में, दोबारा घर में आकर उसको पढ़े, ये विशेष विशद ग्रंथ को उन्होंने अध्ययन किए। अध्ययन करके पहली बार ये परीक्षित का अंतिम महासभा में उसको बोले, अभी से मैं सुन करके इधर से आया हूं, आप मुझे बताते कि कौन उसका सुना उसका प्रभाव, अब मैं आपको परीक्षित का जन्म वृत्तांत बता रहा हूं। सुत गोस्वामी उनको बोले कि सुनो अभी परीक्षित महाराज का जन्म वृत्तांत, जो पहले कैंडिडेट जो भागवत के पहले श्रोता हैं, सबसे पहले भागवत प्रामाणिक श्रोता राजर्षि परीक्षित है, उनके बारे में कहने के लिए शुरू किए। शुरू करने के कहते हैं देखो अभी अभी महाभारत युद्ध का अंत लगभग हो चुका था, फाइनल डे था, मतलब सब महाभारत युद्ध कितना दिन का हुआ था, केवल 18 दिन का हुआ था, तो मतलब अभी 16 दिन बीत चुका था, अभी 17 दिन चल रहा था, 10 दिन तक तो सेनाध्यक्ष रहे भीष्म पितामह, 10 दिन के बाद में बाकी 5 दिन में से 4-5 निकल गए, सेनापति कोई एक दिन दो दिन में सो गए, तो फाइनल डे में और कोई नहीं थे, लगभग कौरव पक्ष में लगभग सेना से मर चुके थे, बचे नहीं थे कोई, गिन करके थोड़े गिने चुने के बचे थे कृपाचार्य अश्वत्थामा और कोई दो चार। तो भीमसेन ने गदा मार करके दुर्योधन का जांघवी तोड़ दिया था, मूर्छ अवस्था में वो पड़ा था, फाइनल डे था वो मैच का, तो इसी अवस्था में वो जाकर के पहुंचे अकेले, दुर्योधन विकल मूर्छ अवस्था में चित्कार यंत्रणा में छटपट हो रहा था, कृपाचार्य और अश्वत्थामा दोनों गए, कृतवर्मा था उनके साथ, तीनों गए, तीनों जाकर उनको मिले, मिल करके दुर्योधन बोल रहा था क्या करो मेरा जीवन गया, हार गया, सब मर गए, आप लोग से कुछ कर नहीं पाए। अश्वत्थामा बोला मित्र आपने गलती किया, नाम क्या गलती करा, मुझे क्यों सेनापति नहीं बनाया, मैं जैसे महावीर हूं मुझे सेनापति अपॉइंटमेंट करता तो देखता, मैं कैसे काम करके दिखाता, तू क्या करता इतने बड़े बड़े से गए तू क्या, अरे मुझे नहीं जानता तू मेरा कितने प्रकार था, तो क्या कर लेना अभी भी टाइम है, अभी मुझे बना दो सना, आज मुझे आज रात कर लो देखना मैं काम करता हूँ तेरा, ना क्या करगा ना, अरे पूरे पांडव को मार के ले आना, सही में कृपाचार्य कृतवर्मा दोनों हंसने लगे, बोले तू मार देगा इतने बड़े बड़े महारथी गए ना, अरे दुर्योधन बोला मित्र तू मुझे सेनापति आज बनाकर तो देख, दुर्योधन बोला शायद कुछ करेगा, मरने शायद भरोसा तो थोड़ा थोड़े से किसी भी भरोसा हो जाता है, जो नदी में डूबते आदमी को पत्थर भी मता उस भी हाथ पकड़ लेगा शायद बच जाऊं, तो बोला शायद कुछ करेगा, तो उसको मथा में पगड़ी बांध दिया, बोला चलो तू ही सेनापति, अभी कुरु सेना का है कितना 5-7 लोग है उसी की सेनापति बना दिया, पोस्ट पोजीशन मिल गया। तब गया रात भर उनको चिंता पड़ा, क्या करूं पांडवों को मार कर दिखाऊंगा तब तो मैं कुछ नाम रहेगा, घर घटी नहीं था सब मर गए थे, जंगल में जाकर पेड़ के नीचे सोया था, तो इसी जो पेड़ के नीचे था वो पेड़ के ऊपर में ब्याठ चमगिदड़ होते ना वो थे, वो रात को उठ करके आवाज करते हैं चलते, तो उनकी आवाज ऊपर देखा वो डिस्टर्ब करते चमगिदड़, तो उनको देखकर सोचा देखो ये तो रात में ही सब जुलते उलते काम करते हैं, तो रात को ही काम करना चाहिए, हाँ अभी सब सोए होंगे, उनका बुद्धि आया नाइट एक्ट करना चाहिए रात्रि से, तो संग तुरंत उठ कर गया कृतवर्मा को और कृपाचार्य को बोला चलो मेरे साथ, मैं सेनापति हूँ मेरा बात मानना पड़ेगा, वो बोले मूर्ख रात्रि में युद्ध नहीं कर, नहीं मेरे सेनापति हूँ मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा, क्या करेंगे बेचारे, बोले बदमाशी से क्यों कर रहे हैं, नहीं चलो मैं सेनापति हूँ मेरे तो दो ही सैनिक आप हैं अभी को है नहीं, चलो मेरे साथ, उनको लेकर के गया रात ही आधी रात में गया, और जो पांडव के टेंट लगा था सब सोए हुए थे भगवान तो सर्वज्ञ है चतुर शिरोमणि है, जिस टेंट में नाम लिखा जिस टेंट में पंच पांडव सोते थे डेली उनका नाम लिखा हुआ था टेंट में, इसकी ये टेंट है उनका ये टेंट सब लिखा रहता ना बोर्ड लिखा रहता था, उसी दिन कृष्ण ने बोले देखो को मीटिंग है आप चलो इधर मेरे साथ, और रात को दूसरे टेंट में सोए थे बट उनका नाम जहाँ लिखा हुआ था घोड़ के सोए थे सब है, क्योंकि महाभारत युद्ध कब हुआ था भूल गए, अभी दिसंबर में हुआ था ना ठंडी के मौसम में, तो कमल ओढ़ना पड़ता ना ठंडी के मौसम में, तो सब ओढ़ कर सोए थे अब नाम तो लिखा हुआ था पंच पांडव के, लेकिन वो थे नहीं उनके लड़के सोए थे, उनके 5 लड़के थे वो सोए हुए थे, वो घुस गया पहले तो जाकर उसको मारा था, सबसे पहले जाकर उनके टेंट में घुसा, किसका उनका सेनापति था क्या उनका दृष्टद्युम्न, उनको जाकर मारा, उनको मारने के बाद कृतवर्मा आदि को वहां लगाकर फिर दौड़ कर आया पांडव के टेंट में, वो सोए थे सोते हुए लड़के को उनको सर काट दिया, 5 को 5 गला काट दिया, शिशु थे वो सोए हुए थे सोते हुए अवस्था में कुमारों 5 कुमारों के गला काट दिया, काट करके जल्दी से डर था कोई पकड़ा ना जाए, चोरी चोरी करता था ना काम, तो उनके 5ों के सर को एक कपड़ा में बांधा उनके चादर में, चादर में बांध कर गांठ मार कर दौड़ा, बोला अभी जाता हूँ जा करके मेरे मित्र को मरने से पहले दिखाऊंगा, देखो 5ों पांडव का सिर काट के ले आया, किया ना नहीं मुझे सेनापति बनाया बाकी कोई जाने से पहले दौड़ के चला गया, बाकी कृतवर्मा अगर उनके पीछे जाते थे, जाके जहाँ दुर्योधन मर रहा था पड़ करके पैर तोड़ गया था उसका, वहां जाकर पहुंचा बोला मित्र देखो मेरे पंच पांडव को बद्ध करके ले आया सर काट के ले, असंभव हो नहीं साफ करके ले आया रातो रात ना, हाँ देखो ना लाओ तो मैं दिखता हूँ मुझे विश्वास नहीं होता, बोला देखो बांध कर उनका सर लेकर आया हूँ तुझे दिखाने के लिए, अंधार रात था वही चश्मा नहीं पहना था दिखा नहीं पड़ा उसको, तो बोला लाओ तो मैं टच करके देखता हूँ सही में उनका सर है, मैं तो जानता हूँ मैं कई बार बचपन से उनके साथ टक्कर खाया बहुत लड़ा उनके साथ, तो लाओ तो सर देखता हूँ सही में, उनको तो मन बहुत खुश हो गया कि सचमुच पंच पांडव के सर काट कर ले आया क्या, तो ये 5ों सर अपने चद्दर में बांध करके लिया था ला के दे दिया लो इसमें बंधा हुआ है उनके 5ों के 5 सर, तो दुर्योधन ने उसको लिया हाथ में लेकर के उनको हाथ में लिया थोड़ा इसे दबाया सारे चूर चूर हो गए, दुर्योधन का हाथ में बहुत शक्ति था जैसे टूट टाट गए, खूब रो रो करके गाली दिया उनको, बोला मूर्ख निर्लज्ज कहीं के ये पांडव हो नहीं सकते हैं, ये उनका सर हो नहीं सकता ना क्यों ना, अरे मैं नहीं जानता पांडव के साथ बचपन से उनके टक्कर खाते हैं, इतने कठिन कठोर सिर है उनका मेरे हाथ में इसी चुट चुट हो गया, तू किसी बालकों के सर काट कर लाया लेकिन पहचाना ही कैसे, अब तो सब चटनी बना चुका चुरचार कर दिया पहचान में नहीं आया बालक थे कि कौन थे, बिना बांधे बांधे सर को तोड़ दाड़ दिया, लेकिन खूब गाली दिया, मरते मरते दुखी होकर मरा दुर्योधन, बहुत अशांति होकर के हाय हाय तूने हमारे वंश को नाश कर दिया, 5 लड़के थे चाहे मेरा हो उनका हो मेरे तो कोई नहीं रहा, उनका पास उनको ही मार दिया तूने बदमाश, खूब उनको गाली दे ली, हुई दुखी और अशांति होकर के मरा और दोपहर में तो कांड हुआ था और ईद ने धृष्टद्युम्न को मारा, कई लोगों को तो पूरा टेंट में हो हल्ला हो गया, कई लोग उठे, सैनिक उठे, हाँ हाहाकार हो गया। सुबह सुबह हो रहा था तब पांडव लोग जहाँ सोए थे वहाँ उठकर कहे, पांडव बाकी युधिष्ठिर भीमसेन कृष्ण कुंती द्रौपदी सब आए, आकर जब देखे सबसे पहले द्रौपदी दौड़कर गई मेरे बेटे के, हे नानी ठीक, जाकर देखे तो बेटे का धड़ पड़ा है सर ने, रक्त का फवार छूट रहा है। तो थोड़ा सोचना चाहिए, एक माँ का पांच पांच बेटा अगर मार दिया जाए, कोई एक भी ना रहे, तो कितने दुख होगा उनको, जिनका पांच पांच महावीर पति हो। अब विजय के फाइनल मैच में, फाइनल डेम में तो जीत ही गए मानो, इसी समय में उनके पांच लड़कों को आके मार दे सोते हुए अवस्था में, कितना दुख होगा उनको। विकल होकर के छाती पीट करके रोने लगी द्रौपदी महारानी ने। तो उनके इस प्रकार दुख को, रोदन को देख करके भीम से तो गर्जना कर रहा था, कौन है ये करूंगा, समझ पता तो नहीं कौन क्या। तो अर्जुन ने घोषणा की, द्रौपदी मैं शपथ करता हूं जिसने मारा अगर उसको मार करके गला काट करके लाकर ना दूं आपको, तो उन्हीं के रक्त में तर्पण करना, क्योंकि उनको भरोसा था कृष्ण है, उनसे पता चली जाए, इस भरोसा से गर्जना करके शपथ किया। शपथ कर गया, कृष्ण को बोला देखो इसे कारण हुआ, प्लीज बताओ कौन है। कृष्ण बोले कोई नहीं बदमाश, सशक्त माया कौन करेगा, वो तो बात है, तीन ही तो बचे थे, तीन ही से बदमाशी दुष्ट ही करेगा, ब्राह्मण के लड़का है बदमाश यही करता है, बाकी कृतवर्मा कभी ऐसे नहीं करेंगे, कृपाचार्य कभी नहीं करेंगे ऐसा काम, तीन में से ही बदमाश यही किया। अच्छा अश्वत्थामा ने मेरे गुरुपुत्र ने ऐसा किया, अब इसको मार के लाऊंगा, शपथ किया, आप गाड़ी तैयार करो चलो, ऑर्डर दिया उनको, भगवान ने तुरंत रथ निकाले और गांडीव हाथ में लेकर चल पड़ा, चल पड़ा तुरंत, बहुत दौड़ कर गया। अश्वत्थामा पांच लड़के को मारा, दुर्योधन से खूब डांट खाया, गाली सुना तो उनका मन तो बिल्कुल खट्टा हो चुका था, एक दिन की पोस्ट मिला वही बेकार हो गया सर, गाली सुना एक दिन सरकार बना था वही बेकार गया सरकार टूट गया, दिन भी नहीं हुआ, रात तो रात, शाम को गवर्नमेंट बना, रात में टूट गया दिन तक होता तक पता चलता, कोई मीडिया फिटिया से फोटोग्राफ लेता कि एक दिन सरकार बना था, वो भी नहीं बना था, बेकार हो गया और पांच बालकों को मारा तो मन उनका बड़े विषण, मन पाप छाया हुआ ना, पाप भरा हुआ है, और डर लग रहा है कि पता नहीं अर्जुन पीछा नहीं करेगा, कृष्ण बता देंगे उनको, तो इसलिए भाग रहा था, रथ में चढ़ के फुल स्पीड में भाग रहा था, चला जाऊं कहीं, लेकिन क्या करे, जो भगवान के रथ तो बहुत वेगवान है, भगवान ने बिल्कुल पता लगा कर उसके पीछा कर लिया, देखे अश्वत्थामा वो देखो जा रहा है मरने वाला, बोले चलाओ स्पीड में, और वो चलाए तो उनके घोड़ा तो टायर पंक्चर हो गया उसका गाड़ी पंक्चर हो गया अब कहाँ जाके चक्का वक्का ठीक किए चले, बोला अब तो गाड़ी बेकार, भाग कर दौड़ा, दौड़ने लगा वो गाड़ी में चल रहे, दौड़ कर कितना देर जाएगा, यही जब फट से पकड़ लिया उसको, पकड़ कर गला चोटी पकड़ जैसे पशु को पकड़ता ना, यही से पकड़ कर मरोड़ कर खींच करके लाए अर्जुन ने, बोले मारे नहीं, बोले अब भी तुझे नहीं मारूंगा, तुझे उनके सामने बलि चढ़ाऊंगा, बदमाश खूब गाली दी, गाली दे करके गला पकड़ कर उसको अरेस्ट करी, बांधे शरीर में हाथ पैर आटा बांध करके उनके पीछे डिक्की में लोड करके लेकर आए, लोड करके लेकर आ रहे थे, भगवान बोल रहे थे रास्ता में अर्जुन देखो आदत आई है, ऐसे को कर्म किया है उसको मार दो, मार देना चाहिए, उसको कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। भगवान जब बोल रहे थे, भागवत बोलता है अभी उनका आंखें कमल चक्के में बिल्कुल शांत बदन में थे, अर्जुन का रक्त आंखी इतने गुस्सा में था, लेकिन बोलता नहीं मैंने बोला हूं उनके सामने जाकर बलि चढ़ाऊंगा, लेकिन अरे ब्राह्मण है गुरुपुत्र है कैसे मारूंगा, मन में सोच भी आ रहा था, मारा नहीं उन्होंने रास्ता में, तो लेकर आया ला करके शिविर में पहुंचे, टेंट में ला करके अनलोड करके डाल दिया, गिरा दिया, बांध कर लाया था सीधा डिक्की से अनलोड किया, यही पड़ा है, यही मारा था बदमाश पापी कहीं, जैसे द्रौपदी के सामने अनलोड करके डाल दिया, द्रौपदी ने देखा कि ये तो कृपी पुत्र अश्वत्थामा है, हमारे गुरुपुत्र है, मुच्यताम मुच्यताम छोड़ दो उसको, खोल दो, अरे तुम बोल रहे खोल दो उसको, तुम्हारे पांच पांच बेटे को उन्होंने मार दिया सोते हुए अवस्था में, उसको छोड़ना चाहिए, तो द्रौपदी माता ने कहती है, हे धनंजय, एक तो ये आपके गुरु जी के पुत्र है, दूसरा ब्राह्मण है, ब्राह्मण पुत्र है, तीसरा उनके माता आपके गुरु माता कृपी के एकलौता बेटा है। मेरा तो पांच बेटा थे और पांचों को पांच मार दिया उन्होंने, अगर आप उनका, और मुझे कितना दुख हो रहा है, मेरा पांच बेटा मर गए, मुझे कितना दुख हो रहा है, अब उनका एकलौता बेटा हुआ है, उनको अगर मार देगा मेरे बेटे तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनको कितना दुख होगा, मेरा तो दुख मिटेगा नहीं, कृपी ब्राह्मणी का दुख कितने होगा, उनको मार देगा तो इसलिए क्या होगा, मारने से छोड़ दो, छोड़ दो, ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है, इसको मारो मत, छोड़ दो। तो अर्जुन विचार फंस गए, बोले तुम्हें बांध कर लाया था मारने के लिए, तुम तो छोड़ दो करके। युधिष्ठिर महाराज भी उनको संबोधन समर्थन किए, हाँ हाँ ब्राह्मण का लड़का है, हमारे गुरु जी का लड़का है, नहीं मानना चाहिए, जो हो गया छोड़ो। भीमसेन गर्जना किया, कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मैं मारूंगा, तुम छोड़ दो, मैं देखता हूँ अभी उसको, बदमाश, अभी मसल दूंगा उसको। अब भीमसेन का सपोर्ट भगवान ने की, वही खड़े खड़े, चार पांच वही खड़े हैं, वो अर्जुन को भगवान को सर देखते, भगवान बोलते हैं, देखो अर्जुन, नियम के अनुसार तो आतता ही है, उसको बद्ध तुरंत करना चाहिए। भीमसेन सही बात कह रहे हैं, ये चंडाल को अभी मार देना चाहिए, निश्चित मार देना चाहिए, मेरा तो मत है, लेकिन ब्राह्मण पुत्र है, अवध्य है, गुरु पुत्र के रूप में अवध्य है, नहीं मारना चाहिए, लेकिन आतता एक तो मारना चाहिए, भीमसेन सही कह रहे हैं। अरे कोई तो बता, मैं क्या करूं, अच्छा क्या करो, मुझे पूछ रहा है, तो मैं तो फिर यही कहता हूं, उनको मारना भी चाहिए और नहीं भी मानना चाहिए, तो आप विचार कर जो करना है सो करो, ये भगवान के बुद्धि भी ऐसे ही होते, हमेशा अपने भक्तों को ऐसी पोजीशन में डालते हैं कि पता ही नहीं चले, हम लोग तो भी जुड़ जाएगा, जो उनका इतने नजदीक भक्त ना हो उनके भाव को शासन समझना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, भगवान टेढ़े है ना, हमेशा टेढ़े बात कहते हैं, परोक्ष बात, सीधा कभी नहीं बोलेंगे, ना सीधा खड़े होंगे ना सीधा बात करेंगे, हमेशा टेढ़ा पे टेढ़ा त्रिभंग ठाणी होंगे, और टेढ़े बात करने लगे, हाँ हाँ मार देना चाहिए, बिल्कुल मार देना चाहिए, लेकिन मारना भी नहीं चाहिए, आप विचार करके जो सो करो, अरे कोई एक बात तक हो, क्या करूं, एक बात नहीं कह रहे, दोनों तरफ सपोर्ट करते हैं, भीम गर्जना करते हैं अभी मार दूं, वो बोलते हैं बाकी नहीं मारू, दो पार्टी हो गई एक परिवार में, भीम तो महागर्जना कर रहा है, वो बोलते हैं ना, बोलते हैं हाँ, अब भगवान बोलते हैं हाँ, दोनों सही कहते, अर्जुन फंस गया, बोले मैं क्या करूं अभी, तो अर्जुन अर्जुन थे, भगवान के भक्त थे, उन्होंने भगवान की मन बात समझ लेते हैं, समझ करके उसको मारे भी और नहीं भी मारे, सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, क्या किए, पकड़ कर इसको खोल दिए, क्योंकि बोलते मुच्चता मुच्चता खोल दिए रस्सी बसी, खोलने के बाद उनका जो जन्म हुआ था उनका सर में एक मणि था, वो तलवार लेकर उस मणि को निकाल लिए, बोले इतने बड़े घाव हो गया पूरा शरीर में, इसे उसको खोद करके मणि के निकाल दिए, मणि निकाल दिए, इतने बड़े घाव हो गया शरीर में कपाल में, और उनका जो बहुत सुंदर केस था उसको सात बंटियां करके काट दिए, मतलब सात जगह में सिखा रख दिए, बाकी सब काट दिए, हम सब एक सिखा रखते ना पीछे, उनका इस साइड में, इस साइड में, इधर उधर साथ कुछ कुछ बाल रखे, बाकी सब काट दिए, कुछ भी नीस भी ऐसे दो चार जगह में काट दिए, मूछ भी इधर सब बिल्कुल कुरूप कर दिए, कुरूप करके मणि निकाल करके छोड़ दिए, बोलो जहट, जो बड़े मान्य गण्य व्यक्ति होते हैं, पूज्य व्यक्ति होते हैं, उनको अपमान कर देना ही उनके मृत्यु जैसा ही है, तो इस प्रकार मारे भी और नहीं भी मारे, दोनों काम किए, भगवान ने प्रसन्न हो, चलो मेरा जो मैं चाह रहा था वही किया आपने, तो उसको छोड़ दिए, छोड़ दिए तो चला गया, लेकिन इतने अपमान उनको लगा था, इतने घोर अपमानित हुआ था, जाते जाते बोला मैं मरने से पहले बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, द्रोणाचार्य का पुत्र था, द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र प्रेम में उनको तो ब्रह्मास्त्र भी सिखा दिए थे, लेकिन वो पढ़ा लिखा था इतना अच्छा, तेज पढ़ने वाला नहीं था, आधा सिखा था, ब्रह्मास्त्र आधा याद था आधा याद नहीं था, छोड़ना आता था और रिटर्न करना नहीं आता था उसको, तो जो भी अभिमंत्रित किया, ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा, पांचों पांडव के ऊपर चलाया, ब्रह्मास्त्र। अर्जुन खड़े थे, देखे कि अर्जुन बिल्कुल उनके ऊपर तो वहां ब्रह्मास्त्र आ रहा है। बोले ये क्या हो रहा है? जानते थे कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर, प्रार्थना करने लगे। कृष्ण बोले ये तू डर रहा है कि ब्रह्मास्त्र है, बदमाशी क्या असत्मा फिर छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र ना, बदमाश छोड़ दिया उसको फिर हाँ वो बदमाश है। तो बोले क्या करूं ना, ब्रह्मास्त्र को तो ब्रह्मास्त्र ही सामना करेगा, आप ज्ञाता हूं ब्रह्मास्त्र में, तो ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र रे मार करके उनको रिपीट किया, उनको ले लिया। तो अश्वत्थामा देखा बेकार हो गया, उनका तो कुछ काम नहीं हुआ, अर्जुन ने उसको टैकल कर लिया। तब फिर दोबारा मारा उन्होंने ब्रह्मास्त्र, बोला इस बार वो नहीं मरे, कम से कम उनका जो पांडव के संतान बीज है, पांडव के जब वो तो मर जाएंगे, उनका कोई वंश नाश हो जाए, कोई लड़का उनके वंश में ना रहे। तो एक ही तो लड़का था उनका, पांचों पुत्र तो मार दिया था पहले, बोला पांचों पुत्र तो मार गए, शादी नहीं हुआ था उनका, लेकिन एक लड़का शादी हुआ था और उनका पत्नी गर्भवती है। कौन था वो? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा, उत्तरा गर्भवती, उनके पता था। उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र चलाया, गर्भवती थी उत्तरा। और वो थोड़े दिन के बाद में तभी भगवान ने बोले थे जो हो गया जो हो गया, सब विदाई ले रहे थे उस दिन, भगवान ने बोले चलो अब ठीक ठाक हो गया, मैं जा रहा हूं। जाते समय में और हठात विदाई हो रहा था, उत्तरा देवी रानी महल से चित्कार करते करते कृष्ण कृष्ण बचाओ मुझे, दौड़ करके आई। क्या हुआ क्या हुआ, सब दौड़ पड़े, किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। भगवान तो अंतर्जामी है, गाड़ी में बैठे थे, बैठे बैठे उनको पता चल गया बदमाश ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। अब ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में जा चुकी है, जा करके ऐसे शास्त्र कहता है कि उनको ब्रह्मास्त्र, ये गर्भ के जो लड़का इतने नाजुक इतने कोमल अवस्था में होते हैं, ब्रह्मास्त्र इतने महा हाई वोल्टेज करंट जला चुका था जा करके, कुरु पांडवानां संतान बीज को लगभग जला दिया था जाकर ब्रह्मास्त्र गर्भ में, इसलिए विकल होकर के उत्तरा रो रही थी, बहुत यंत्रणा, कुछ करो कुछ करो, मैं भले मर जाऊं लेकिन ये संतान भी बच जाए, ये प्रार्थना करती थी। तो भगवान ने देखे मुझे रक्षा करना, मैं होते होते कैसे हो जाएगा, तुरंत प्रवेश कर गए उत्तरा के गर्भ में। देखिए भगवान सर्वसमर्थ है, उनको ब्रह्मास्त्र को प्रतिरोध करना उनके लिए कोई कठिन बात था क्या? वहीं बैठे बैठे रथ में एक संकल्प करते हैं ब्रह्मास्त्र खटो, तुरंत ब्रह्मास्त्र हट जाता, इच्छा मात्र से ही ब्रह्मास्त्र बेकाम हो जाता, इच्छा मात्र से। लेकिन इच्छा नहीं किए, बैठे बैठे संभाल नहीं, गर्भ के अंदर घुस गए, उत्तरा देवी की गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए छोटे बन करके। जब भगवान प्रवेश कर गए, भगवान साक्षात ब्रह्मणोहम प्रतिष्ठाहम, ब्रह्म के प्रतिष्ठा है, परम ब्रह्म है, ये ब्रह्मास्त्र क्या करेगा उनका? लेकिन बोलते हैं कि भगवान खाली हाथ में नहीं गए थे, साथ में दो अस्त्र लेकर के गए थे, एक सुदर्शन एक कौमुदी की गदा, दो अस्त्र लेकर के घुसे थे गर्भ के अंदर। वो जा करके चारों तरफ घूम करके उसको घुमा रहे थे, चक्र भी घुमा रहे थे गदा भी घुमा रहे थे। बोलते एक सुदर्शन चक्र तो ऐसा है कि उनके सामने कोई ब्रह्मास्त्र पाशुपत कुछ टिक नहीं सकते, भगवान ने सुदर्शन हाथ में लेकर, ये तो अपने आप ही समर्थ हैं, फिर अस्त्र भी सुदर्शन लेकर गए, उनमें नहीं भरोसा, फिर कुमुदी के लिए ना क्या जरूरत था। तो कहते हैं कि भगवान इतने भक्तों की चिंता में आतुर हो गए थे, वो भूल गए अपने समर्थकों सामर्थकों, इतने आतुर हो गए थे भक्त वात्सल गुण से, बोले ना मेरे भक्तों के ऊपर विपत्ति आया, मैं वेट करूंगा, ऑर्डर करूंगा, फोन करूंगा पुलिस को जाकर काम करो करके, मैं स्वयं दौड़ के जाऊंगा। तो स्वयं प्रवेश कर गए, प्रवेश किए तो प्रवेश किए, स्वयं प्रवेश कर चेक कर रहे थे, बोले नहीं आपने अस्त्र सुदर्शन लेकर गए थे, लेके चलाए भी उनको, बोले बाई चांस सुदर्शन बाई चांस फेल हो जाए तो एक अल्टरनेटिव ले जाना साथ में, तो अल्टरनेटिव मेडिसिन भी लेकर गए थे, कुमुदी गदा भी लेकर गए थे, दोनों चला रहे थे हाई डोज, बोले कैसे भी बचाना है उनको। अरे भगवान को अस्त्र का क्या, भगवान की दृष्टि से ही सब ठीक हो जाए। बोले मरी मर गया था, अंदर में जल चुका था, लेकिन भगवान की दृष्टि का इतने प्रभाव है कि तुरंत जी गई। परीक्षित ने गर्भ के अंदर जिनका दृष्टि पढ़ करके जिनका दृष्टि खोला, पहली आंख खोला, आंख में जीवनी शक्ति दृष्टि शक्ति जिस दृष्टि ने दिया, दृष्टि दिया तो उसी को ही देखेगा, उन्हीं के तेज से उन्हीं को देखा, अंदर ही उनके सामने चारों तरफ परिक्रमा कर रहे थे भगवान, उनका भक्त का परिक्रमा करते, कभी सुने भक्त सब भगवान की परिक्रमा करते हैं, लेकिन सबसे पहले जन्म होने से पहले भगवान भक्त की परिक्रमा किया गर्भ के अंदर घुस करके। भगवान की कुछ कमाल है उनके लीला, उनके परिक्रमा करते उन्होंने देखा, उन्हीं से दृष्टि शक्ति पा करके देखा। उनका नाम इसलिए परीक्षित पड़ा, जब उन्हें से गर्भ से बाहर आए, उनका जो अन्नप्राशन हुआ, नामकरण हुआ, जो सब संस्कार हुआ, जब भी कोई उनके सामने आता था सबको देखते थे उन्हें, नहीं नहीं ये नहीं, क्यों ऐसा करते थे, परीक्षा करते थे, परीक्षा करती थी परीक्षित, सबको परीक्षा करते, क्यों जिनको उन्होंने गर्भ में सबसे पहले झांकी देखे थे उन्हीं को देखना चाहते थे, वो कहाँ है, वो कौन है, ये तो नहीं ना, ये नहीं ना, ये नहीं, सबको परीक्षा करते थे, सबको परीक्षा करते थे, इसलिए नाम उनका पड़ा परीक्षित। हमेशा ढूंढते थे, उनका दृष्टि केवल कृष्ण को देखना चाहता था और किसी को नहीं, हमेशा कृष्ण को देखना चाहता था उनका कृष्ण, सबसे परीक्षा करते, बोले नहीं नहीं देखना चाहते थे, कृष्ण को देखने से तृप्त होते थे। तो जो परीक्षित महाराज को जन्म होने से पहले अमोघ अस्त्र ब्रह्मास्त्र से भगवान स्वयं जा करके उनको परिक्रमा करके स्व तेज से उनको बचा दिए, उनको क्या एक छोटे लड़का ब्राह्मण के सांप लग जाएगा उसे बचाने, बचाएंगे नहीं, ब्रह्मास्त्र से जिसको बचा सकते थे तो इसकी ब्राह्मण बालक का सांप से नहीं बचा सकते, बिल्कुल बचा सकते थे, है ना नहीं। लेकिन अभी उनको परीक्षित को बचाए, परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, उसके बाद में भगवान ने बोले ठीक है अब ठीक ठाक है मैं भी जाऊंगा, अब फिर विदाई लेने के लिए उपक्रम किए। विदाई लेने के लिए जो उपक्रम किए, तब विदाई लेने चाह रहे थे तब कुंती आकर रोने लगी, बोले नहीं थोड़ा रुक जाए, गाड़ी में बैठे थे जाने के लिए, सीएफ हो रहा था, अब कुंती आकर बोले देखो जब हमारा पास विपद था, इतने कष्ट में थे तब हमारा साथ था, जब हमारा विपद टूट गया तो हमें छोड़ के जा रहा है, तो जाने दो इसी संपद को, विपत्ति अच्छा है मेरे लिए, विपत्ति में तो आप हमारे साथ है, ये संपद में आप चला जाता है हमको छोड़ करके, हमको ये संपद नहीं चाहिए, हमको आप चाहिए। पूरे इतिहास में प्रथम एक महिला है, आप लोग दुनिया में जितने भगवान को आरती उतारने वाले हैं सब प्रसिद्ध मांगते हैं भगवान को जाकर के, जय जगदी ये दे दो ये दे दो, लंबे लिस्ट पकड़ाते हैं, कोई कभी इतिहास में एक हुआ जो भगवान जग मांगा भगवान मुझे कष्ट दे दो, मेरे दिमाग खराब हो जाए, मेरे सर तोड़ जाए, मेरा ये हो जाए, मांगा कोई विपत्ति मांगा? एक ऐसे महिला हुई थी महियसी, महारानी कुंती, भगवान को प्रार्थना करती है, विपदं संतुते तत्र 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 जगत गुरु, हे जगत गुरु मुझे और विपदा दीजिए, और विपत्ति दीजिए, क्योंकि विपद में ही आप आते हैं और आपके दर्शन में अपुनर्भव दर्शनम, मुझे आप चाहिए, विपद में आप होते हैं तो विपद ही चाहिए, विपद की प्रार्थना की महारानी कुंती ने। तो आपका समय हो चुका है, कल कुंती माता की ओर को प्रार्थना और बताएंगे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।